गुरु वृंदावन बिहारी लाल की
जय।
जय जय
श्री राधे,
जय जय श्री राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण,
ॐ नारायण नारायण नारायण,
ॐ नारायण 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 नारायण,
सद्गुरु नारायण नारायण नारायण,
सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण,
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। नित्य की भांति सर्वप्रथम संकल मंत्र का उच्चारण करें, एकाग्र चित्त होकर के सभी लोग बोलेंगे ओम तत्सद, द्वैतस्य ब्रह्मणो अह्नि द्वितीये परार्धे श्री श्वेत बाराह कल्पे, वैवस्वात्मनमंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कली प्रथम चरणे जम्बूदीपे भारतवर्षे
भारतवर्षे
भरतखण्डे
भरतखण्डे आर्यावर्तैक
देशान्तर्गते कीलकनां संवत्सरे अमोक नाम्नोऽहम् अमो गोत्र उत्पन्नोऽहम् अद्य माशाना
उत्तमे मासे
मार्गशीर्ष मासे कृष्णपक्षे नवम्यां तिथौ शुक्रवासरे
महाराष्ट्रप्रान्ते
मुंबई नगर्यां श्री प्रेमपुरी आश्रमे
श्रीमद्भागवत सप्ताह
श्रवणार्थं
चतुर्थ दिवसे
द्वितीय उपस्थितौ विनियोगः अनेन
श्रीमद्भागवत सप्ताह
श्रवणेन
माम
धर्मः
अर्थः
कामः
मोक्षः
फलानां
प्राप्तिः
अस्तु
एवं च
अभीष्ट फल सिद्धिः
भगवत्कृपा
अस्तु श्री कृष्ण परमात्मा देवता
प्रियन्ताम्
इति जगन्नियन्ता जगदाधार अखंड ब्रह्मांड नायक नंदनंदन मुरली मनोहर भगवान श्याम सुंदर के पावन पुनीत पादारविंद में एवं श्रीमद् भागवत सप्ताह के शुभ अवसर पर आवाहित समस्त देव विग्रहों के पावन चरणों में सत्सत वंदन परम आदरणीय परम श्रद्धे साक्षात शिवस्वरूप ब्रह्मलीन लीलालीन अनंत श्रीविभूषित पूज्य स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज के पावन पुनीत श्री पादारविंद में सत्सत वंदन हमारे श्रीमद् भागवत सप्ताह के मुख्य यजमान के रूप में आदरणीय श्रद्धेया बहन माधुरी जी ढोलकिया तथा अमित जी एवं उनका समस्त परिवार तथा अन्य समस्त यजमान वृंद हमारे श्री प्रेमपुरी आश्रम के कुशल कर्मठ जिनकी व्यवस्था में कहीं चूक नहीं होती है ऐसे हमारे इस पावन हृदय के विशेष सामीप्य में परम स्नेही हमारे श्री गिरीश जी तथा हमारे सोलंकी जी तथा हमारे राजेश जी तथा हमारे झुंझुनवाला जी तथा अन्य हमारे समस्त ट्रस्टी वृंद श्रद्धामयी मंगलमयी मातृशक्ति स्वरूपा माताओं कृष्ण भक्ति के रस में आप्लावित हमारे समस्त भक्त वृंद जिनकी वाणी में सरस्वती का वास, ऐसे हमारे प्रवीण जी रवि जी योगेश जी तथा हमारे आचार्य वृंद विप्र वृंद श्रद्धामयी माताओं भद्र पुरुषों, बड़ी सुंदर चर्चा आप श्रीमद् भागवत से के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। आपके हृदय का भाव मेरे हृदय तक पहुंच रहा है और आपका भाव ही हमारे हृदय में, आपकी भक्ति की धारा ही हमारे भाव हृदय से जब संस्पर्शित होती है, उसका संस्पर्श होता है तो उसी का कथा का एक श्रोत्र इस भक्ति में वातावरण के रूप में परिणित होकर आपको आह्लाद, आपको आनंद, आपको सरसता को प्रदान करता है। बड़ी सुंदर चर्चा की गई है कि व्यक्ति का भाव ही जब मूर्ति में स्थापित होता है तो मूर्ति हंसती हुई नजर आती है, जब व्यक्ति का भाव स्थापित होता है तो मूर्ति उसको मुस्कुराती नजर आती है। ये अपना ही भाव है, भाव के अनुसार वस्तु का दर्शन होता है। जितना उत्कृष्ट भाव होगा उतना आपको कथाओं में आनंद आएगा, रस आएगा। भगवत कथा को भाविभोर होकर के, रोम रोमांचित होकर के, गदगद हृदय से जब हम सुनेंगे तो उससे हमको परमानंद की प्राप्ति होगी। सुखदेव जी महाराज इस पावन कथा को पुण्य सलला मातेश्वरी जाह्नवी गंगा के तट पर शुक्रताल के गंगा के तट पर विराजमान होकर के श्री राजा परीक्षित को उपदेश दे रहे हैं। बड़ा सुंदर उपदेश दिया, राजन अपनी एक एक इंद्रिय को ईश्वर से जोड़ो, कोई भी इंद्रिय भगवत चिंतन के बिना नहीं रहनी चाहिए। एक एक इंद्रिय को भगवान से जोड़ो, जब समस्त इंद्रियां परमात्मा में जुड़ जाएंगी तो आपको प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा रसानुभूति होगी, आनंदानुभूति होगी, आनंद का दर्शन होगा, भगवान कृष्ण का दर्शन होगा। सो प्रयास करो, प्रयत्न करो, इतन करो कि हमारी हर इंद्रिय इन इंद्रियों को परमात्मा के समर्पित कर दो। ये इंद्रियां परमात्मा की दी हुई हैं, ये ईश्वर की दी हुई हैं, इन पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। जो वस्तु उसकी है जब उसको समर्पित कर देते हैं तो उसको सुधारना, संभालना, बनाना उसका दायित्व हो जाता है। ये इंद्रियां परमात्मा की दी हुई, ये शरीर परमात्मा का दिया हुआ है, इसलिए वो इंद्रियों को ईश्वर के समर्पित कर दो। ध्यान देना, श्रीमद् भागवत में चर्चा आ रही है, बड़ी सुंदर चर्चा आई। ध्यान से सुन, विवेचन आ रहा है।
रे चित्त चिंतय चिरम, रे चित्त चिंतय चिरम, चरणो मुरारे पारं गमिष्यति तो भवसागरस्य। रे चित्त चिंतय चिरम, चरणो मुरारे अपारं गमिष्यति तो भवसागरस्य। रे चित्त चिंतय चिरम, चरणौ मुरारे। अरे पारं गमिष्यति इतो भवसागरस्य पुत्रः कलत्रमितरे नहि ते सहाय शर्वं विलोकय शके मृगतृष्णकाभम्। परीक्षित, इस चित्त को परमात्मा को दे दो। रे चित्त चिंतय चरम चरण मुरारी, मुरारी के पादारविंद में, भगवान कृष्ण के पादारविंद में इस चित्त को समर्पित कर दो। चरण मुरारी, भगवान मुरारी के पादारविंद में समर्पित करो राजन, तभी पारम गमिष्यति इतो भवसागरस्य, भवसागरस्य पारम गमिष्यति इतः, तभी तुम भवसागर से पार कर पाओगे राजन। ध्यान से सुनना राजन, दो सागर हैं, एक का नाम भाव सागर है और दूसरे का नाम भवसागर है। जब तक जीव ये भाव सागर में नहीं डूबेगा तब तक भव सागर से पार नहीं होगा। जो भक्त भाव सागर में डूब जाता है तो भव से पार हो जाता है। भव सागर को पार करने के लिए भाव सागर में डूबना पड़ेगा। कोई भी आराधक उपासक भक्त जो भाव सागर में डूब जाता है तो भगवान भव सागर से पार कर देता है। जिंदगी में भव सागर को पार करना है तो भाव सागर में राजन डूबना ही पड़ेगा। भक्ति से ओतप्रोत, ओतप्रोत होकर के भाव के सागर में जब गोते खाने लग जाओगे, डूबने लग जाओगे, निमग्न हो जाओगे, जो भाव के सागर में डूबोगे तब भगवान तुमको भव सागर से पार कर देगा। भव सागरस्य, और जिद कहीं तुम भाव सागर में नहीं डूबे तो फिर भव सागर से पार नहीं हो पाओगे। पुत्रः कलत्रमितरे, नहीं ते सहाय, जिनको तुम समझते हो शायद ये मेरे सहयोगी बनेंगे, नहीं ते सहाय, वो तुम्हारे सहायक नहीं है। राजन सावधान, राजन सावधान, सावधानी से सुनो राजन। भव सागर को पार करना है तो आपको भाव सागर में डूबना पड़ेगा। हर इंद्री के साथ, किसी इंद्री को छोड़ना नहीं, किसी इंद्री को छोड़ना नहीं। बहुत सुंदर बात बतलाई, बहुत प्यारी बात बतलाई राजन। ध्यान से सुनो, बड़ी प्यारी बात। सबई मना, सबई मना कृष्ण पादारविंद यो, बचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, करौ हरे मंदिर मार्जना दिशु, श्रुति चकारा अच्युत कथा दयो। ध्यान से सुनो, सबई मना कृष्ण पादारविंदयो, कृष्ण पादारविंदयो। सुखदेव जी विवेचन करते हैं राजन परीक्षित, सबई मना, इस मन को कृष्ण पादारविंदयो हो, नंद नंदन मुली मरुवर के पादार बिंद में समर्पित कर। कृष्ण पादार बिंदयो, इतना ही नहीं सुखदेव भगवान बोले, बचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। केवल मन से ही नहीं, ये जो वाणी है ना वाणी, इस वाणी से तू भगवान का गुणान बात कर, गुणानुवर्णने। ये केवल बात भागवत में नहीं कही जा रही है, ये बात केवल भागवत में नहीं, रामायण को खोलिए, तात में मिलाते चलिए, सभी दर्शनों में बात आ रही है, सर्वत्र बात आ रही है। रामायण में भी कहा जा रहा है एक एक इंद्री को रामायण में भी परमात्मा से जोड़ा गया है, वहां भी कहा है अरे जीव सुदादुर जीव सुदादुर जीव समाना अजय नहीं करे राम गुण गाना, अरे जे नहीं करे राम गुण गाना जीव सुदादुर जीव समाना। भाई जो जिह्वा है उस जिह्वा को जिह्वा नहीं कहना, कब तक? जब तक वो भगवान का गुणानुवाद नहीं करती है तो जिह्वा जिह्वा नहीं है। कबीर कहते हैं अरे जिह्वा तो तब लगे भली जिह्वा तो तब लगे भली जिह्वा तो तब लग भली और जब लग मुख मेरा नहीं तो बाहर कीजिए मुख में भलो नचाम। इस चमड़े की क्या आवश्यकता है, यदि राम का नाम नहीं लेते हो तो इस चमड़े को रखकर कोई सार्थकता नहीं, कोई उपयोगिता नहीं है। हे राजन, इस जीव की शोभा तभी है, इस जिह्वा की शोभा तभी है जब इस जिह्वा से आप ईश्वर का गुणान बात करो, वरना ये जिह्वा किसी काम की नहीं है, ये तो चमड़ी है। शिवराजन, चैतन्य होकर के, सावधान होकर के भगवत गुणान बात करो, ईश्वर का चिंतन करो, एक एक इंद्रिय को जोड़ो। बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे हैं भगवान। हम जानना चाहते हैं, हमारी तो वृत्ति आपके आशीर्वाद से लगी है, किसी भक्त ने और भी ऐसा काम किया है? हाँ राजन, वो तो अच्छा उपदेश दे रहे। राजन, एक भक्त है जिसका नाम है अम्बरीश, जिसका नाम है अम्बरीश। सुखदेव जी महाराज बोले राजन परीक्षित, उस अम्बरीश का कोई भी अंग संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं रहता है, संसार में रहते हुए संसार में नहीं रहता है, वो प्रत्येक अंग को भगवान में जोड़े हुए है, प्रत्येक अंग से भगवान का चिंतन करता है। अम्बरीश का एक नियम है, हमेशा एकादशी करते हैं। क्या करते हैं? एकादशी करते हैं। सुनो ध्यान से, एकादशी का तात्पर्य होता है, एकादशी का अर्थ समझो, दस और एक ग्यारह। संस्कृत में बोलते हैं एकादश, कितना बोलते हैं? संस्कृत में बोलते हैं एकादश, दस एक ग्यारह को कुछ लोग ग्यारस भी कह देते हैं। आज क्या है बोले ग्यारस है, कुछ बोलते एकादशी है। एकादशी क्या है? पांच ज्ञानेन्द्रियां और पंच कर्मेन्द्रियां, एक मन, इन ग्यारह को आप भगवान को अर्पित कर दो, बस एकादशी है। यही एकादशी है, ईश्वर के अर्पण कर देना, इनको दुनिया के भोग विषय विलासों में न लगाना, ही एकादशी है। शिव राजन परीक्षित, उस राजा अम्बरीश ने, अरे उसका नाम है ये अम्बरीश, क्या नाम है? अम्बरीश। अंबर, ध्यान देना, अंबर धन, ईश बराबर अम्बरीश, आकाश चवर्णे दीर्घा, अंबर धन ईश, आ और ई मिलकर के अम्बरीश दीर्घ हो गई। क्या हो गया? एचओ एवा एवा सूत्र से नहीं जाता हूं, लौट आओ। अंबर धन ईश बराबर अम्बरीश, जिसने इस अंबर को, जिसने इस आकाश को, जिसने इस संपूर्ण आकाश में यहां पर जड़ जंगम जगत में इस अंबर में जिसने ईश का दर्शन किया है, जिसने ईश्वर को देखा है, जिसने परमात्मा को देखा है, जर्रे जर्रे में कण कण में जो ईश्वर को देखता है, अरे भाई तो अम्बरीश है, हम भी अम्बरीश बन सकते हैं। देखो हम अम्बरीश हैं कि नहीं। जब आप ध्यान में बैठते हैं और ध्यान में मन निमग्न हो जाते हैं, हमें कोई एक बहन आज यहां बोल रही थी, महाराज जब आप कल कथा कह रहे थे नरसिंह भगवान के प्राकट्य की, तो मैंने व्यास गद्दी पर एक पुष्प के अंदर नरसिंह भगवान का दर्शन किया। हमसे कोई माता बोली आज कमरे में, ये क्या है? ये भाव का अतिरेक है, ये भक्ति का अतिरेक है। यही भक्ति बढ़ जाए और वृद्धि को परिणत कर जाए तो हम अम्बरीश बन जाएंगे। आज पुष्प में देखा है, कल घर में देखो, परसों धीरे 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 अब जगत प्रपंच है, सब तुमको ईश्वर ही नजर लगना ले जाएगा, उतना आप अम्बरीश बन जाएंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बड़ी सुंदर कथा, अम्बरीश अम्बर धन ईश बराबर अम्बरीश, ऐसी वृत्ति बनाओ। सुखदेव विवेचन करते हैं, सबई मना कृष्ण पादारविंदयो बचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरे मंदर मार्जना दिशु। करौ, ये जो कर हैं, ये जो हाथ हैं, करौ उभौ, उभौ करौ, ये दोनों हाथ आपके हैं, करौ मंदिर मार्जनादिशु, मंदिर में मार्जनी, मार्जी माने झाड़ू, ध्यान देना। अम्बरीश जी महाराज जो मंदिर बनाए हैं वो किसी के हाथ झाड़ू लगवाते हैं, देखना भक्त का लक्षण, यह विवेचन कर रहे हैं। अम्बरीश किसी के हाथ से झाड़ू नहीं मंदिर में लगवाते हैं, स्वयं झाड़ू मारते हैं, राजा हैं, ध्यान देना, राजा हैं। राजा होने पर भी करौ हरे मंदिर मार्जना दिशु, मार्ज माने जो झाड़ू है, स्वयं अपने हाथ से मंदिर में लगाते हैं, भगवान का भोग स्वयं बनाते हैं, भगवान के पूजा के बर्तन स्वयं मलते हैं, भगवान के लिए बगीचे से फूल स्वयं तोड़ते हैं और स्वयं माला को बनाते हैं, ध्यान देना। प्रत्येक इंद्री को मन में लगाओ पुष्टि मार्ग में, ध्यान देना, पुष्टि मार्ग में इस चीज की बहुत प्राबल्यता है। पुष्टि मार्ग ही कहते हैं, अरे भाई इसी ढंग से ईश्वर में जुड़ो, प्रत्येक इंद्री को ईश्वर में जोड़ के रखो, भगवान में लगा के रखो। गोस्वामी जी ने बहुत अच्छा वर्णन किया, अरिते शिर कट तू मरिशम तूला और जे नन मैं हरि गुरु पद मूला। ते शिर, वह शिर सिर नहीं है, वो कट तुमड़ी, वो कड़वी तुमड़ी की तरह है, कड़वी तुमड़ी, तुमड़ी समझते हो, लौकी, गोल लौकी, वो शिर की तरह होती है, लौकी माने दूधी, क्या वो भाषा का चक्कर है, दूधी, वो गोल गोल जो दूधी होती है, और दूधी की तरह तो खोपड़ा है ये। ते शिर कट तू मरि सम तूला और जे नन मैं हरे गुरु पद मूला। जो हरि गुरु के पदों में मस्तिक नहीं झुकता है वो कड़ी दूधी है, ध्यान देना। आप लोगों के बीच रहना पड़ेगा और हम सीख जाएंगे आपकी भाषा, फिर आपको अच्छा लगेगा, आपके शब्द भी बीच में आना चाहिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। वृंदावन बिहारी लाल की। तो सिर को तब सिर माना, मस्तिष्क को तब मस्तिष्क कह जाओ, ईश्वर के चरणों में झुके। नयनन दर्श संत नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। इन नेत्रों के द्वारा हरि का दर्शन नहीं, संत का दर्शन नहीं, गुरुजनों का दर्शन नहीं, तो इस नेत्र को क्या मानोगे? लोचन मोर पंख कर लेखा। मोर पंख में जो आंख बनी होती है वो आंख देखती नहीं है, फोटो है केवल, ऐसा समझ लो। यदि यह आंख संत भगवंत का दर्शन नहीं करती है तो ये आंख आंख नहीं है, फिर तो मोर के मोर का जो पंख है वो पंख वाली आंख है। प्रत्येक इंद्री के द्वारा यहां पर अपने मन को अम्बरीश राजा ने जोड़ रखा है परमात्मा से। एक एक इंद्री से ईश्वर का चिंतन करते हैं, भजन करते हैं, किसी भी इंद्री को हटने नहीं देते हैं, सभी इंद्रियों को इकट्ठा करके सजो करके भगवान में बांध दिया है, अर्पित कर दिया है, जोड़ दिया है। प्रयत्न करो कुछ समय के लिए हम भी अम्बरीश बन जाए, बहुत ज्यादा नहीं तो कम से कम यहां बैठे तब तक अम्बरीश बन जाए, और ज्यादा न हो पाए तो कम से कम जब तक अम्बरीश की कथा सुने तब तो अम्बरीश बने ही जाए, इतना तो हो सकता है। अम्बरीश बन के कथा को सुनो, मानो कि मैं अम्बरीश हूं, और अम्बरीश मानते हुए अम्बरीश राजा की कथा सुनो। राजा अम्बरीश कैसे हैं, किस ढंग के, बड़ी सुंदर चर्चा आ रही है, बड़ी सुंदर, बड़ी प्यारी। अरे पेड़ पे पेड़ पेड़ क्या जिस वृक्ष में, वह वृक्ष वृक्ष क्या जिस वृक्ष में छाया नहीं, ध्यान देना, वह वृक्ष वृक्ष क्या जिसमें छाया नहीं, और वह छाया छाया क्या जिसमें शीतलता नहीं। उस वृक्ष को वृक्ष नहीं कहना चाहिए कि जिसमें छाया न हो, और उस छाया को छाया नहीं कहना चाहिए जिसमें शीतलता न हो। शीतलता होने पर छाया कहलाती है, और छाया होने पर वृक्ष कहलाता है। यदि वृक्ष में छाया नहीं और छाया में शीतलता नहीं, न वो वृक्ष है न वो शीतलता है, ध्यान देना, न वो छाया है। ध्यान से बात को सुनना, जीवन में समझो। वह पुष्प, पुष्प क्या जिसमें सुरभि नहीं है, जिसमें सुगंधि नहीं है, जिसमें पराग नहीं है। पराग है, सुरभि है, तभी तो पुष्प है, वरना उसे पुष्प नहीं करना चाहिए। पंचतंत्र में लिखा हुआ है, बड़ी सुंदर बात, वहां एक शब्द प्रयोग किया है, वह पुष्प नहीं है, वो किंचुक है, केवल देखने का है। सुर भी होनी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, सुर भी है। विवेचन करते हैं सुखदेव जी महाराज, अरे वह आंख आंख नहीं है जिससे भगवत दर्शन नहीं, संत दर्शन नहीं होता है, वो हाथ हाथ नहीं है जो भगवान की पूजा नहीं करता है, वह पैर पैर नहीं है जो जाकर के भगवान के मंदिर में नहीं जाता है, वह मस्तिष्क मस्तिष्क नहीं है जो ईश्वर के चरणों में नहीं झुकता, वह हृदय हृदय नहीं है जो ईश्वर का चिंतन नहीं करता है, वह चित्त चित्त नहीं है जो ईश्वर का चिंतन नहीं करता है, वह मन मन नहीं है जो परमात्मा का मनन नहीं करता है। मनन करने पर ही तो मन है, ईश्वर का मनन करे तो मन, ईश्वर का चिंतन करे तो चित्त, वरना न वो चित्त है, वरना वो ना मन है, न वो हाथ है, न वो पैर है, बताया गया है। एषाम विद्या न तपो न दानम अज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भूविभार भूता अमनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती, मनुष्य रूपेण, अरे केवल वो मनुष्य के रूप में दिखाई पड़ रहा है, देखने में मनुष्य लग रहा है, जैसे मृग बिना पूंछ का होता है वैसे ही इंसान भी बिना पूंछ का है। मृग की भांति वह पशु है, वह पशु है। विद्या नहीं, धर्म नहीं, संध्या नहीं, पूजन नहीं, जप नहीं, कथा नहीं, सत्संग नहीं। ध्यान देना, सुखदेव जी महाराज बहुत अच्छी व्याख्या कर रहे हैं। राजन, इनसे रहित यदि आदमी है, इंसान है, मनुष्य है, तो उसे मनुष्य कहलाने का कोई हक नहीं है। उसकी गणना तो पशु में आनी चाहिए, वो पशु है, पशुता है। मनुष्य में मनुष्यत्व नहीं है, पृथ्वी में गंधत्व नहीं है, जल में शैत्य नहीं है, ध्यान देना, वायु में स्पर्श नहीं है, तो वायु वायु नहीं है, पृथ्वी पृथ्वी नहीं है, जल जल नहीं है। उसका गुणधर्म होगा तभी तो वो मानव कहलाएगा। यदि उसका गुणधर्म उसमें नहीं है तो उसे वो नहीं कहना चाहिए। सुनो ध्यान से, सुराजन, इस जीव में ये सब गुणधर्म होने चाहिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। आइए, संकोच करता हूं, समेटता हूं। शुरू मेरी आंखें बंद हुई, हमने सोचा हम लंबे चले जाएंगे आंखें बंद होती ही, हम मस्ती में डूब जाए ना तो हम खुद बह जाते हैं और मुझे लगता आप भी बह जाते होंगे। कुछ माताएं कमरे में आई, धैर्य वगैरह, कोई माता धैर्य है, कुछ माताओं को लेकर आई, बोले महाराज जी आज कृष्ण जन्म है, थोड़ा हम पर भी कृपा ध्यान रखना। मैं कहने निश्चिंत रहो, पूरा पूरा ध्यान रखेंगे आपका। कई बार हमारे गायक भी बोलते हैं, गुरुजी थोड़ा मेरे को भी ध्यान रखा करो। सब पर पूरा पूरा ध्यान है, पर हम करें तो क्या करें। महाभारत में लिखा है केनापि देवेन हृदय स्थितोस्मि इथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। कुछ बात आई समझ में? केनापि देवेन हृदय, तो पता नहीं कौन सा देव अंदर बैठा है, मैं चाहता हूं थोड़ा बोलूंगा लेकिन वो लंबा हो जाता है। केनापि देवेन हृदय स्तोष्मी इथा नियुक्तोष्मी, वो जैसा कहता है और हम वैसे ही चल देते हैं। जब व्यास गद्दी पर बैठते हैं, ताकत लगाता हूं फिर भी रोक नहीं पाता हूं, विस्तार हो जाता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए, बड़ी सुंदर कथा राजा अम्बरीश की। अम्बरीश जी महाराज बड़े भाव पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, लगन पूर्वक इस एकादशी के व्रत को कर रहे हैं, बहुत लगन पूर्वक, बड़ी भावना, बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा रस आ रहा है इस एकादशी। सुनो, एकादशी का व्रत एक ऐसा व्रत है, यदि इसे विधिवत कर लिया जाए, क्या कहना। यहां विवेचन आ रहा है, भागवत में विवेचन आ रहा है, गीता में विवेचन आ रहा है, वेद में विवेचन आ रहा है एकादशी करने का। देखो वेद पे, यजुर्वेद को देखो, हाँ, यजुर्वेद में मंत्र आया है, बड़ा प्यारा मंत्र है, अग्ने वृतपते, अग्ने वृतपते व्रतम चरिष्यामि। अग्ने वृतपते व्रतम चरिष्यामि, व्रतम चरिष्यामि, व्रत को करना चाहिए, व्रती बन के रहो, यजुर्वेद का मंत्र है। गीता में कहा गया है कि विषया विषया विनवर निवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, निराहारस्य, निराहार रहो, गीता निराहारस्य विषया विनिवर्तन्ते, विषयों से निवृत्त हो जाओ। बी उपसर्ग पूर्वक निवर्तन है, बी उपसर्ग पूर्व, उपसर्ग पूर्वक, ये शब्दों का श्रृंगार है, ये शब्दों का श्रृंगार है। उपसर्ग लग जाता है, जब प्रत्यय लग जाता है तो प्रत्यय उपसर्ग के लगते ही भैया शब्द का रूप सौंदर्य श्रृंगार हो जाता है। जैसे हमारा श्रृंगार टिक्की बिंदी से होता है, हमारे प्यारे भैया गिरीश जी बोले कल सज धज करके आना, मैंने श्रृंगार करके आना। कैसे आना? तो जैसे आपका श्रृंगार होता है वैसे शब्द का श्रृंगार होता है। यहाँ लिखा विषया विनिवर्तन्ते, विनिवर्तन्ते बी उपसर्ग है, बी उपसर्ग पूर्वक निवर्तन्ते, निवर्तन मन विशेष रूपेण, बी माने विशेष रूप। जब विशेष रूप से आप विषयों से निवृत्त हो जाएंगे और निराहारक से निराहार हो जाएंगे तो आपकी एकादशी हो गई। गीता की एकादशी ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा, समय नहीं। हम गीता पर भी भगवान के पास से ऐसा ही बोलते हैं। अब तो हम जुड़ गए हैं, सुनाते रहेंगे जब तक इस तन में दम दम है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। सुनो ध्यान से, प्रत्येक इंद्रिय से अम्बरीश राजा एकादशी का पालन कर रहे हैं, एकादशी कर रहे हैं, एकादशी का उद्यापन भी होता है। सोचा इसका उद्यापन किया जाए, उसकी तैयारी हुई। अम्बरीश जी महाराज ने सभी तैयारी की, आज उद्यापन होना था, द्वादशी थी। उसी उद्यापन के पूजन के मध्य में दुर्वासा जी महाराज आए, नमस्कार प्रणाम किया, वंदन किया, कहा प्रभु भोजन का समय है, प्रसादी पाओ। बोले प्रसादी तो मैं जरूर पाऊंगा लेकिन स्नान करके जमुना जी में, जमुना जी स्नान करके आता हूं तो प्रसादी पाता हूं, तो तुम पूजा करो ना अपनी। अम्बरीश जी पूजा में लग गए, वो नहाने चले गए। और महात्मा का स्नान तो बड़ा विलक्षण होता है, है? महात्मा को जल जंगल जमीन तीन बहुत प्रिय होते हैं, जल जंगल जमीन। जल जल खुला हो, जमीन खुली हो, जल जंगल और जमीन खुली हो, जंगल खुला हो, जल खुला हो, फिर अपने को भूल जाता है। अब तो दुर्वासा जी महाराज अपने शिष्यों के साथ गोता मार रहे हैं, इधर एकादशी का समय हो रहा है, समापन हो रहा है अवधि का, अवधि का समापन हो रहा है। ब्राह्मणों ने कहा महाराज ये समय निकल जाएगा, ठीक बात नहीं है, पर हम कैसे बिना अति को भोजन कराए कर लें। बोले ऐसा करो नियम का पालन कर लो, केवल जल अर्पण करते थोड़ा जल ले लो। अब जल फिल्लू में ले आई था, थोड़ा मुंह में डाला ही था, इतने में दुर्वासा महाराज आ गए, बड़े आक्रोशित हुए, बहुत आक्रोशित हुए। और आक्रोश में आकर के एक अपनी जटा उखाड़ी जमीन पर मारी, कृत्या प्रकट हो गई, संकेत किया। बहुत कुछ शब्द यहां पर बोले हैं, कोई बोलने को हमारे पास समय नहीं है। कृत्या, इसने नियमों का पालन नहीं किया है, नियमों को भंग कर दिया, इसलिए जाओ कृत्या, जाओ इसको भस्म कर दो, खलास कर दो, खत्म कर दो। कृत्या जब दौड़ी तो इधर भगवान का जो सुदर्शन था, भगवान कहता जब कोई भक्त मेरा बन जाता है, हर इंद्रिय से जब मेरा चिंतन करता है, सब सब इंद्रियों को मेरे में जोड़ देता है, तो मेरा भी कर्तव्य है कि जब इंद्रियां सब मेरे में लग जाएंगी तो पंगु बन जाएगा। उसकी आंख मेरे में लगी, मन मेरा में लगा, सब कुछ मेरे में लग गया, तो अब मेरे भक्त का संरक्षण कौन करेगा, उसका रक्षण कौन करेगा। तो भगवान ने कहा देखो अम्बरीश, तुम ऐसे तन में हो जाते हो, तुमको शरीर की शुद्ध बुद्ध नहीं रहती है, तो हे अम्बरीश ये जो मेरा चक्र है आपकी रक्षा किया करेगा, चक्र आपका संरक्षण करेगा। तो चक्र रक्षा कर रहा था, जो कृत्या आगे आई तो चक्र, पहले उस चक्र ने उसे भस्म किया कृत्या को, फिर दौड़ा, फिर वो दौड़ा महाराज की तरफ, बाबा दुर्वासा जी की तरफ, और दुर्वासा भागे पूरे विश्व ब्रह्मांड में, भागते दौड़ते फिरे, कोई रक्षा करने वाला उनको मिला नहीं। अंत में भगवान विष्णु के पास गए, महाराज हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, बहुत बड़ी भूल हो गई है, हमें आप क्षमा करो, हम प्रार्थना कर रहे हैं। दुर्वासा जी से भगवान बोले हैं हमसे गलती हो गई, आपसे गलती हो गई ना जी, गलती हो गई है। बोले किसके साथ हुई है, किसके साथ हुई है? बोले राजा अम्बरीश के साथ। तो बोले ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही मेरे भगत करते हैं, सारे लोग सब ऐसा ही तो करते हैं। अरे गलती हुई है, सुनना ध्यान से, बहुत सुंदर बात है, गलती हुई है, अम्बरीश के साथ और माफी मांग रहे हैं। वहां भगवान ने कहा देखो जहां गलती है वहीं जाओ, हैं? सासू से झगड़ा किया, पति से लड़ गई, पति पत्नी से लड़ गया, और वहां तो कुछ नहीं कह रहा है, मंदिर में जाता है, हे भगवान मेरा झगड़ा हो गया है, हे भगवान मेरा झगड़ा हो गया है, पत्नी बोलती हमारा झगड़ा हो गया है, वो बहू बोलती सासू से झगड़ा हो गया है, भगवान बोलता रे जहां झगड़ा किया है जिससे गलती की उसी जाके माफी मांग, उसी से माफी मांग जाकर मेरे पास क्यों आया। बहुत अच्छा उत्तर दिया भगवान ने, अरे जहां पर भूल हुई भाई उसी से बोलो ना, अम्बरीश से तुमने भूल की तो अम्बरीश के पास जाओ और उससे कहो कि हमसे गलती हो गई, भूल हो गई। जाकर के जब अम्बरीश के पास गए और ऐसे हाथ जोड़ना चाहा तो तुरंत एकदम राजा अम्बरीश ने दोनों हाथों को पकड़ लिया, कहा भगवान ऐसा न करो, मुझे पाप में मत डालो, आप तो महात्मा हैं, संत हैं, ऐसा करोगे तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। तुरंत प्रार्थना की चक्र से, भगवान आप शांत हो जाओ। चक्र शांत हो गया। इस प्रकार से इस एकादशी के व्रत के परिणाम स्वरूप फलस्वरूप उन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया, उनका जीवन सफल हुआ। हे राजन, इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को ईश्वर में लगा करके हम एकादशी व्रत के माध्यम से उस परमात्मा का सामीप्य प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी कथा श्रवण कराई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे।
जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, पाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, पाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले प्यारी मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले।
जीवन है
तरणी का तू दासी बना ले,
अपने चरणी का तू दासी बना ले,
अपने तरणी का तू दासी बना ले,
अपने चरणी का तू दासी बना ले,
वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले,
वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले,
जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले,
जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले,
मेरे अपने अपने,
मेरे अपने हुए ना अपने,
मेरे अपने हुए ना अपने,
मेरे अपने हुए ना अपने,
अभी तो तू ही अपना ले मुरलिया वाले,
अभी तो
जय हो
मुरलिया वाले,
जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले,
जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले।
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे। कुछ चर्चाएं संक्षेप में सुनो। सुखदेव जी विवेचन करते हैं, राजन परीक्षित कभी भी इन इंद्रियों पर ऐसा विश्वास न करो कि अब मेरे बस में है, अब मेरे अधीन है। कभी न कहो कि अब मैंने मन को बस में कर लिया है, अब मैंने चित्त को बस में कर लिया है। ऐसा जो सोचता है वो भूल में है, वो चूक में है, वो गलती में है। कभी ऐसा मत मानो कि इंद्रियां हमारे नियंत्रण में, एक कभी किसी को कहीं भी धोखा दे सकती हैं। किसी पर विश्वास करना पर इंद्रियों पर विश्वास नहीं करना। जो इंद्रियों पर विश्वास करता है वो धोखा खाता है, जो मन पर विश्वास करता है वो धोखा खाता है। मन के कहने पर कभी नहीं चलो, मन के कहने पर कभी नहीं चलो। वेद में मंत्र आता है, ए न मनुषा न मनुते। वेद में दो प्रकार के मंत्र आते, ए न मनुषा न मनुते, जिसे मन के द्वारा कभी नहीं जाना जा सकता है। दूसरा मंत्र आता है, ए न मनसैव अनुदिष्टव्यम, उस परम तत्व को मन के द्वारा ही जाना जा सकता है। विरोधाभास हो रहा कि नहीं हो रहा है? वेद की श्रुतियां हैं और दोनों वेद की श्रुतियां हैं और दोनों में विरोध आपस में झगड़ा हो रहा है। एक कहती श्रुति कि मन से नहीं जाना जा सकता है, दूसरी कहती है कि मन से ही जाना जा सकता है। क्या समाधान होगा? कहा भाई, जो विकृत मन है, जो दूषित मन है, उससे कभी भी उस परम तत्व को, परमात्मा को पाया नहीं जा सकता है। जो निष्कल है, विशुद्ध है, और विशुद्ध मन से ही परमात्मा को पाया जा सकता है। विकृत मन जीव को धोखा देता है, गर्त में गिरा देता है। सुपरीक्षित महाराज को कथा सुना रहे हैं, राजन सावधान होकर कथा को सुनो, ये मन धोखा देता है। भगवान थोड़ा बतलाने की कृपा करें, किस भक्त को धोखा दिया? राजन तुम नाम जानना चाहते हो तो उस भक्त का नाम है शौभरी। शौभरी 100 साल की समाधि जल में लगाए, ध्यान देना, आप तो 10-5 मिनट की समाधि लगाते होंगे। मन का धोखा देना स्वाभाविक कोई बड़ी बात नहीं है। शौभरी 100 वर्ष तक समाधिस्थ जल में रहे, ध्यान देना,
मन को पकड़ के रखा, लेकिन पकड़ के रखने पर भी जब भी मौका मिलता है चूक नहीं करता है, एक गड़बड़ी कर बैठता है। चौभरी की आंख खुली और आंख के खुलते ही एक मत्त को देखा और मत्त मछली में रमण कर रहा था। चौभरी के अंदर विकृति पैदा हो गई, विकार पैदा हो गया। सुखदेव जी भूले राजन परिचित, साधना को छोड़ करके चौभरी मानधाता के पास गए। मानधाता से कहा कि हम आपके दरबार में कुछ इच्छा लेकर के आए हैं, बोलिए मुझे आपकी पुत्री चाहिए, मैं विवाह करना चाहता हूं। अरे आप तो बूढ़े हैं, दाढ़ी सफेद हो गई है, हम अधर्म ये अन्याय नहीं कर सकते हैं कि मैं अपनी पुत्री को आपको दे दूं। हाँ ठीक है, हम स्वयंवर का कार्यक्रम रखते हैं और यदि मेरी कोई पुत्री आपको स्वीकार करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर हम किसी को जबरदस्ती आपके गले में नहीं डालूंगा। आप मुझे शाप दो, कुछ भी करो। चौभरी महाराज ने स्वयंवर की तैयारी हो रही, स्वयंवर में बहुत से राजकुमार आए हैं। अरे देश देश के भूपति नाना, बहुत से लोग आए, बहुत से कुमार आए। उनके अंदर महर्षि चौभरी जी महाराज आए और ऐसा रूप बना करके आए कि जितने राजकुमार थे उनके सामने सारे फीके थे। इतना सौंदर्य लावण्य उनके अंदर था, अपने योग बल से अच्छा रूप बनाया। और जब रूप बनाया और जब स्वयंवर के बीच में पहुंचे तो उनकी 50 कन्या थी, 50 कन्याओं ने उनको वरण कर लिया। ध्यान देना, सुखदेव जी बोले परीक्षित, इस मन पर कभी भरोसा नहीं करना, विश्वास नहीं करना। राजन मन के कहे न चालिए, मन के कहे न चालिए, और मन है पक्का धूर्त, ले डाले दरियाए में जाए हाथ से छूट। अरे मन के कहे न चालिए, अरे मन के मते अनेक, और मन के मारे मर गए मुल्ला काजी शेख। इस मन ने बहुतों को मार दिया। राजन सावधान, अरे मठे से निक्षांत से निकाला गया मक्खन का लौंदा, दही से निकाला गया, छांस से निकाला गया मक्खन का लौंदा, और आप कहो कि ये ऐसा ही गोल मटोल बना रहे। अरे भाई हाथ पे रखोगे पिघल जाएगा, ये टिक नहीं सकता है। और मक्खन का ढेला हिट लगते ही पिघल जाएगा। राजन ऐसे ही तो मन है, इस मन को जहां पर संयोग योग मिलता है विकृतियों का तो अच्छे अच्छे मन वहां पर फिसल जाते हैं। श्री राजन सावधान, कभी से विश्वास नहीं करना, सतर्क रहो, सावधान रहो। बड़ी सुंदर कथा सुनाई है सुखदेव जी महाराज ने, राजा परीक्षित को विश्वास नहीं करना, सतर्क रहो, सावधान रहो, प्रतिपल प्रतिक्षण इसको त्रास दो और इसको समझाते रहो, इसको समझाते रहो। समझाते रहोगे तो बहुत अच्छी बात है, और गफलत में जाओगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। समझाओ मन को, कहो मन को, अरे मनमाखी यन दो उनकी, मनमाखी यन दो उनकी, एक ही गति लखाए, और कबहूं मोहन भोग पे तो कबहूं मल पर जाए। ध्यान देना, मन और मक्खी दोनों एक से होते हैं। ध्यान देना, मन और मक्खी दोनों एक से होते हैं। हलवाई की दुकान पर चमचम रसगुल्ले पर तुरंत उड़ करके बैठ जाती है। ध्यान देना, और थोड़ी ही देर में बहती हुई गंदी नाली में भिष्टा पर बैठ जाती है। अरे मन तेरी चाल लखी नहीं जाई, हरे मन तेरी चाल लखी नहीं जाई। पल में आवे और पल में जावे, पल में चौदिस धाई। मन तेरी चाल लखी नहीं जाई। सावधान सतर्क मन से ये कभी भी धोखा दे सकता है। महाराज शौभरी ने विचार किया, यहां लिखा है बहुत लंबी अवधि तक गृहस्थ जीवन को भोगने के बाद एक दिन उनको बहिराग की जगह, अरे ये मैंने क्या किया। ध्यान देना, आदमी कभी कभी चैतन्य तो होता है, ठोकर तो लगती है, ठोकर लगी होश आया, ये मैंने क्या किया, तुरंत तो वैराग्य आया, वैराग्य आया। वैराग्य को लाओ, सजग रहोगे, सावधान रहोगे तो वैराग्य जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा। सतर्क रहो, सावधान रहो। शबरी महाराज ने भगवान से बहुत अन्याय विनय किया, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इस प्रकार से पुनः उसी वृत्ति में आकर के जंगल में जाकर के आपकी साधना में संलग्न हुए। अपने प्राणों, अपने प्राण को अपान में, अपान को समान में, समान को उदान में खींचते हुए प्राणों को चक्रों के माध्यम से ब्रह्मरंध्र में ले गए हैं। मन को वहां पर टिकाया है, वृत्ति को वहां टिकाया है और भगवान के पावन पुनीत पादारविंद में अपने को जोड़ दिया है, संलग्न कर दिया है। इस प्रकार से शौभरी ने अंत में परमात्मा का साक्षात्कार किया है। सो भैया, पहले जीवन को बिगड़ने मत दो, सतर्क रहो। साधना का मतलब है साध, क्या कर, साध, साधो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। संक्षेप से शौभरी की कथा आपको सुनाई मैंने, आगे कथा आती है। ए आती राजा की, अयाती ने अपने बेटे पुरु से कहा, बेटे हमने बहुत भोग भोगे हैं पर मैं क्या बताऊं, इंद्रियों में अभी तक वैराग्य नहीं आया है। अग्नि में आहुति डालो, आहुति डालने के पश्चात वो बढ़ती है, भोगों को देने से भोगों की इच्छाएं बढ़ती हैं, इच्छा पर इच्छा, इच्छा पर इच्छा। इच्छाओं को बहुत मत बढ़ाओ, इच्छा बहुत बढ़ेगी समस्या खड़ी हो जाएगी, इसलिए इच्छाओं को रोको। एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी, कहां तक पूर्ति करोगे। कोई एक बुराई आ जाए तो एक बुराई दूसरी को पैदा करती, दूसरी तीसरी को करती है, तीसरी चौथी को करती, बुराई से बुराई निकलती जाती है। सतर्क करो, सावधान, बुराइयों को छूट मत दो, उन पे कंट्रोल रखो। ध्यान से बात को सुनो कि आई बुराइयों पर नियंत्रण पाओ, छूट मिल गई तो जीवन विकृत हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। ध्यान देना, संत लोग उदाहरण देते हैं कि कोई एक शराबी था, थोड़ी सी दवा को दारू के रूप में लेता था, दारू से कुलिया बन गई, कुलिया से पूरा ग्रास भर गया, पूरे से अद्धा बन गया, अद्धा से पौना बन गया, पौना से बोतल बन गई और बोतल से जीवन में वो रगबग गई। नौकर को भोजा भेजा, आज भूल आया, जा तूला, 1000 का नोट दिया। नौकर गया, उसने सोचा मेरा राजा पिएगा, पिएगा और खाने की इच्छा करेगा गंदा, तो पैकेट भी ले लिया, सोचा ये खाएगा पिएगा, बीमार पड़ेगा, डॉक्टर भी चाहिए। डॉक्टर को बोला, सभी को बोलते बालते वो घर पहुंचा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जब घर आया, बोतल दी, साथ में पैकेट दिया, ये क्या है। बोले आपकी वृत्ति बिगड़ेगी तो ये मांस है। थोड़ी देर में घंटी बजी, दरवाजा खोला, एक नर्तकी आई, बोले ये कौन है। बोले आप खाओगे, आप खाओगे, पियोगे, फिर खाओगे तो विकार आएगा और विकार के आने पर नृत्य देखोगे। थोड़ी देर में घंटी बजी, दरवाजा खोला, अब की बार डॉक्टर साहब आए। बोले ये किस लिए आए, तो बोले बीमार नहीं पड़ोगे, बेकार आएंगे। तो थोड़ी देर में वो स्यापा करने वाली माइया भी आ गई। बोले ये क्यों आई? का एसी लाइन में लगी हुई है, जब तुम ये दुष्कर्म करोगे तो बीमार पड़ोगे, बीमार होगे तो क्या मरोगे नहीं? थोड़ी देर में अर्थी वाला भी आ गया। बोले अर्थी किस लिए है? कहा डॉक्टर साहब कोई खुदा नहीं, परमात्मा ने तुमको बचा ले, हो सकता है तुमको मरना पड़ जाए, इसलिए अर्थी है। उसने कहा अच्छा ये लंबी लाइन एक बुराई के पीछे लगी? बोले एक बुराई के पीछे लंबी लाइन है। उसने बोतल को उठाया और शपथ ली कि मैं कसम खाता हूँ आज से इस शराब को छोड़ता हूँ, इस शराब छूट जाएगी, जिंदगी अच्छी बन जाएगी, तो इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। उसने बोतल को लिया और जमीन पर मारा और कहा कि भाई आज से तू नौकर नहीं है, आज से तू मेरा गुरु का काम करेगा। ध्यान देना, शिक्षा कहीं से मिल सकती है? सुंदर सा उपदेश राजा याति को दिया गया, अरे भाई भोगों से उपराम हो। संत समस्या का समाधान करते हैं, महात्मा जीव को सुधारते हैं। उपदेश लग गया, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, जीवन संभल गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, भज गोविंद गोविंद गोपाला,
भज गोविंद गोविंद गोपाला,
भज गोविंद गोविंद गोपाला,
भज गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला,
भज गोविंद गोविंद गोपाला,
भज गोविंद गोविंद गोपाला,
भज गोविंद गोविंद गोपाला,
भज मुरली मनोहर नंदलाला,
भज मुरली मनोहर नंदलाला, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। मैं प्रयास कर रहा हूं आपको ज्यादा से ज्यादा चरित्रों को सुनाया जाए, संक्षेप में कई चरित्र सुना दिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, अब मैं आपको राम जी का चरित्र सुनाने जा रहा हूं। सुनो ध्यान से, रमु क्रीड़ायाम धातु से राम शब्द बनता है, रमु क्रीड़ायाम धातु से राम शब्द बनता है। व्याकरण की दृष्टि से रमु क्रीड़ायाम, रमंते योगिनो इष्मन स रामा, किम नाम, राम क्या है? बोले योगिना यस्मिन रमंती, योगी इति अमलात्मा महात्मा, जिसमें रमण करते हैं वही तो राम है, वही तो लोग जिस तत्व को पाने के लिए जंगलों में कंदराओं में गुफाओं में जाते हैं, वही तत्व तो राम है, वही तत्व राम है। ऐसे उस राम तत्व की चर्चा श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, संक्षेप से बताऊंगा। ये बड़ी समस्या है, क्या बताऊं, क्या छोड़ूं, क्या पकड़ूं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे दिमाग में मेरी माताओं की बात अटकी है कि महाराज समय से हमको भी प्रयास कर रहा हूं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जय जय श्री राधे।
श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम
श्री राम जय राम जय राम जय राम
जय जय राम। जय रामचंद्र भगवान की। हमारे परम पूज्य परम आदरणीय अनंत श्री विभूषित मानरमाणी के अखाड़े के गौरव बिले पार्ला आश्रम संन्यास आश्रम के परमाध्यक्ष तथा भारत में अनेक नगरों में कई संस्थाएं संस्थापित हैं उन समस्त संस्थाओं के परमाध्यक्ष और हमारी इस प्रेमपुरी आश्रम के भी परमाध्यक्ष अध्यक्ष श्रद्धे महामहिम महामंडलेश्वर हमारे पूज्य स्वामी विश्वेश्वरानंद जी महाराज महामंडलेश्वर। आज मैं जो कुछ भी कह करके आपको सुना रहा हूं ये महाराज श्री की ही देन है। प्यार से जरा प्यार से पीछे तक सभी की ताली बजनी चाहिए। अरे भाई ताली में संकोच क्यों? ताली में ढील नहीं, ध्यान देना। इस ताली के बजाने से मालूम क्या होता है? जब ताली बजती है तो ताली के बजने से एक दूसरे के टकराने से इन तालियों में संत के आगमन पर भगवंत के आगमन पर यदि आपकी ताली बजती है तो ताली के बजने से इसमें रेखाएं कुछ बुखार की हैं, कुछ जुखाम की हैं, कुछ खांसी की हैं, ध्यान देना। इन हथेलियों में कुछ रेखाएं खांसी की, कुछ जुखाम की, कुछ बुखार की और कोई कोई ज्यादा असाध्य बीमारियां होती हैं उनकी भी होती हैं। जब ऐसे संतों के आगमन पर और भगवंत के आगमन पर यदि ताली बज जाए तो तालियां तो वो गलत रेखाएं मिट जाती हैं, ध्यान देना, गलत रेखाएं मिट जाती हैं। और कोई बगल वाला नहीं बजावे तो उसके में जाके वो छप जाती है। सबने ताली बजाई ना? नहीं बजाई? कोई भूल से रह गया हो दोबारा फिर बजा देवे, न कह महाराज तो गड़बड़ हो गया। ध्यान देना, संत का आगमन मैंने आपको प्रातः काल की सभा में सुनाया था कि इंद्र की सभा में गुरुदेव आए और इंद्र उठा नहीं, अभिवादन नहीं किया, ताली नहीं बजाई, नमस्कार नहीं किया, तो क्या परिणाम निकला आपने सुना होगा। मैं बहुत खुश हूं आप लोगों से कि आप सम्मान करना जानते हैं, आप मान करना जानते हैं, मान देना जानते हैं और देना ही चाहिए, क्योंकि इस आश्रम का नाम है प्रेमपुरी आश्रम। क्या नाम है? जहां प्रेम होता वहां मान अपने आप निकलता है, सम्मान अपने आप निकलता है। प्रेम से ही मान होता है और प्रेम से ही सम्मान होता है। जहां प्रेम नहीं वहां मान नहीं वहां सम्मान नहीं। ये तो भाई प्रेमपुरी आश्रम है और इस आश्रम में बैठे जितने भी लोग हैं वो सब प्रेम के पुजारी हैं। वो सब प्रेम के पुजारी हैं, माने प्रेमपुरी जी के पुजारी हैं और स्वामी विश्वेश्वरानंद जी महाराज के पुजारी हैं। ध्यान देना, बड़ी सुंदर बात, सुनो ध्यान से। मैंने अभी अभी आरंभ किया है राम जन्म की चर्चा।
राम अवतार की बात। अवतार के मतलब होता है अब तान तारेति अघान, अब तान अघान नीचान तारेति इति अवतारा। हमारे कहा किम नाम अवतारा, अवतार किसे कहते हैं? तो कहा अब माने तान, तान माने अघान, अघान माने नीचान, तारेति जो नीचों को अघों को भी तार दे उसका नाम है अवतार। और एक अवतार नहीं, प्रातःकाल वामन अवतार, अभी हो रहा है राम अवतार, और थोड़ी देर में होगा कृष्ण अवतार, एक नहीं कितने अवतार। मेरी बात को ध्यान से सुनना, अवतार चार प्रकार के होते हैं। अच्छा उसमें बताऊं तो अच्छा रहेगा, इसे संक्षेप करना चाहता हूं। महाराज जी घड़ी की बड़ी समस्या होती है, तरंगे आती रोकने पड़ता है। पर एक आपको बात बताऊं कि हमारा अपना जो ट्रस्ट है, क्या बात, ट्रस्टियों ने कहा कि महाराज जब आप भय जाते हो तो कोई बात नहीं है, 10 15 20 25 मिनट दिल भर आप बोलो कोई बात नहीं है। यहां का विशेष मैंने यह चीज देखी है, ये प्रेमपुरी जी महाराज की कृपा इनके अंदर से हो गई है। मैं 10 15 मिनट कोई बात नहीं, आइए सुनिए, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, सियावर रामचंद्र भगवान की, रमन्ते योगिनः इष्मन् स रामः, जिसमें योगी इति अमलात्मा महात्मा रमण करते हैं उसका नाम है राम। संक्षेप से अर्थ संक्षेप से यहां बताया जा रहा है, खटवांग दीर बाहुश्च, खटवांग दीर दीर्घ बाहुश्च रघु तस्मात् पृथुश्रवा अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो अभवत्। ये एक श्रृंखला बता दी, खटवांग से दीर्घबाहु हुए, उनसे रघु, और रघु से अज, अज से दशरथ। अत संचीव, दशरथ के जब कोई पुत्र नहीं हुआ तो अब क्या करना है? जब कोई वस्तु कहीं से उपलब्ध न हो तो गुरु जी के पास जाओ, गुरु हर वस्तु दे सकते हैं, पुत्र ही नहीं कुछ भी मिल सकता है। गुरु तो खान है, कल वृक्ष है, उस कल वृक्ष के नीचे बैठ के जो मांगना चाहो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपकी कहीं इच्छा की पूर्ति न हो तो प्रेमपुरी जी महाराज के सामने खड़े हो जाना और कहना है गुरुदेव आप इच्छा की पूर्ति को तो पूर्ति कर देंगे, विश्वास फलदायक, इतना बड़ा विश्वास काम करता है। गुरुदेव के पास जाते हैं और कैसे गए, ध्यान देना, गुरु के पास कैसे जाओ जानने की विधि है। यहां लिखा है, ये रामायण में भी चर्चा आती है, भागवत में चर्चा आ रही है कि भैया बिना पादुका के गए, बिना चप्पल के गए, और जब हम बिना पादुका के चलते हैं जितनी हम तपस्या करेंगे, हमारे मंत्र आता उपनिषद में कि तपस्या ब्रह्मचर्यते, ध्यान देना, उपनिषद का मंत्र है, वेद का मंत्र है, तपस्या ब्रह्मचर्यते, तपस के द्वारा उस तत्व की प्राप्ति होती है, आप जो चाहे वो मिल जाता है, बड़ी अच्छी बात है। लिखा है, अरे तपबल शंभु करें संघारा, और तप बल से धरे मैं भारा, तप के बल से ब्रह्मा शिवजी को करता है, विष्णु रक्षा को करते हैं और शंकर संहार को करते हैं, तप में बहुत बड़ा बल होता है। वेद कहता है तपसा ब्रह्मचर्यते, तप से क्या नहीं मिल सकता है। इस प्रकार से श्रम साध्य यात्रा की, गुरुदेव के चरणों में पहुंचे, महाराज पुत्र नहीं है, गुरुदेव ने कहा कि मिल जाएगा कोई बड़ी बात नहीं है, एक यज्ञ कर लो पुत्रेष्टि तुमको पुत्र मिलेगा। पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ, यज्ञ में से यज्ञ भगवान निकले चरु लेकर के, वो चरु लेकर के खीर रानियों को खिलाई, गुरु का आशीर्वाद मिला। रानियों को जब चरु दिया गया तो उससे सगर्भा हुई, लिखा है मानस में, जब सगर्भा हुई तो बोले करे मां तो मंदिर में बासा। सगर्भा नारी को कैसे रहना चाहिए, जिसके गर्भ में संतान आए बोले कैसे रहना चाहिए, बोले करे मात मंदिर में बा, वो मंदिर में रहें, वो जप करें, वो पूजा करें, वो पाठ करें और भजन करें। भजन पूजा पाठ करते हुए उनको वो समय व्यतीत करना चाहिए, उनको नावल नहीं पढ़ना चाहिए, ध्यान देना, पिक्चर नहीं देखना चाहिए, माया शर्ता छाया वगैरह वगैरह ये जो पत्र पत्रिकाएं हैं गंदे भद्दे चित्र नहीं देखना चाहिए। शुद्ध सात्विक भाव से इस प्रकार से उनका जीवन अच्छा बीता। कुछ समय के बाद में समय आया, ध्यान देना, समय आया और समय आने पर कौशल्या सुमित्रा कहके ही सभी देवियों को भैया चार संतानें हुई रामचंद्र भगवान की। अवतार कर दिया मैंने तो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। ध्यान देना, हमसे कुछ भक्तों ने कहा कि महाराज रामायण में अब जब मानस कथा कहो तो कम से कम एक भाव जरूर कह देना, मैं आपकी वाणी से एक भाव सुनना चाहता हूं मानस का। राम जी महाराज का जन्म होता है, भाव तो कई उठ रहे हैं, एक नहीं, भगवान राम जब एक रोटी का टुकड़ा लेकर के आंगन में घूमते हैं, द्रवोश दशरथ अजिर बिहारी, अजिर बिहारी, अजिर बोलते आंगन को, अजिर बिहारी, अजिर माने आंगन में, जब राम जी बिहार कर रहे हैं और आंगन में बिहार करते समय एक कौवा आया, क्या आया, कई भाव, कौवा आया और कौवे ने रोटी ली, चलो आगे बढ़ो, मैं इसी पटक जाएंगे, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। राम जी थोड़े बड़े हुए, चारों भाई, गुरुदेव जी आए, हमको पुत्र दीजिए, कहा कि राम देत नहीं बनत गुसाई, हम नहीं दे पाएंगे। कहा भाई ये इसीलिए तो मिले तुमको, ये इसीलिए आए हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। मन मार करके पुत्रों को दे दिया, ताड़का को मारा, सुबाहु को मारा, यज्ञ का संपादन किया गुरुदेव ने, यज्ञ का संपादन हुआ। ध्यान देना, संक्षेप में सूचना आई, जनकपुर गए, शादी हुई, विवाह करके चारों देवियां घर में आ गईं, बड़े आराम से रहने लगे, कैकेयी आदि सभी रानियां बड़ी प्रसन्न हैं, सुमित्रा कौशल्या प्रसन्न हैं, बहुत घर में आनंद आ रहा है। ध्यान देना, आनंद आ रहा है, इसी आनंद के बीच में श्रवण समीप भये शुद्ध केशा, दशरथ ने सीता देखा, बाल सफेद हो गए, अरे ये तो बाल सफेद हो गए, वैराग्य आया, गद्दी दे देना चाहिए। ध्यान देना, जब गद्दी देने की बात आई तो मंथुरा ने सुझाव दिया, ध्यान देना, कैकेयी को सुझाव दिया, कई परिवार में, देश में, समाज में ऐसे लोग होते हैं जो समाज को तोड़ने वाले होते हैं, विघटन पैदा करने वाले होते हैं, यदि अयोध्या में विघटन किसी ने पैदा किया, यदि अयोध्या को किसी ने तोड़ा है तो वो मंथुरा है, ध्यान देना, अयोध्या को तोड़ने वाली मंथरा है और हस्तिनापुर को तोड़ने वाला शकुनी है, यदि शकुनी न होता तो हस्तिनापुर नहीं टूटता और यदि मंथरा न होती तो अयोध्या नहीं टूटती, उसमें एकत्व समत्व समन्वय रहता। अयोध्या को बर्बाद कर दिया मंथरा ने सुझाव देके कैकेयी के माध्यम से, इसी प्रकार से हस्तिनापुर को भी बर्बाद कर दिया शकुनी ने दुर्योधन के माध्यम से। ध्यान देना, बड़ी सुंदर बात, भैया समझो बात को, उस समय तो शकुनी एक था, उस समय शकुनी एक था और मंथरा एक थी, मंथरा एक ही थी, ज्यादा नहीं थी, प्रयास करते तो रोका जा सकता था मंथरा को, आज की दुनिया में तो गली गली में मंथरा घूम रही है, गली गली में मंत्र है, गली गली में शकुनी है, और गली गली की बात क्या कहूं, हर मोड़ पे शकुनी खड़ा है, और हर मोड़ की बात क्या कहूं, हर पड़ोस में शकुनी खड़ा है, अरे मोड़ की बात क्या कहूं, हर घर में मंत्रा शकुनी बैठे हुए। क्या होगा उस समाज का, क्या होगा उस परिवार का? ध्यान देना, ध्यान देना, समाज को संगठित रखो, समाज को बांध के रखो, समाज घर परिवार में शकुनी जैसे मंत्रा जैसे लोगों को न बढ़ने दो। बहुत यदि वो नहीं बढ़ेंगे तो अयोध्या में खुशहाली रहेगी, अयोध्या में खुशहाली रहेगी। भैया कैकेयी ने वर मांगा है, अरे 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष का राम जी को वनवास हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, भाव नहीं कह पाऊंगा जो कहने जा रहा था, आग्रह था भक्तों का, जरूर थोड़ा टच करता हूं। वृंदावन बिहारी लाल की वनगमन हुआ, इस भागवत का प्रसंग नहीं है, न वो रामचरितमानस में टच है, संस्पर्श है केवल। जब वनवास हुआ सीता और राम लक्ष्मण का, ध्यान देना, वनगमन की यात्रा चल रही है, भगवती सीता ने कहा मुझे बहुत प्यास लगी है प्रभु जी, हमें जल दीजिए, जल दीजिए, बहुत प्यासों की प्राण निकल रहे हैं। राम ने लक्ष्मण को बुलाया, लक्ष्मण मुझे बहुत प्यास लगी है, देखिए मुझे प्यास लगी है, जल लाइए। लक्ष्मण ने पुट बनाया, पत्ते का दोना बनाया, जल लेने को चले गए। राम सीता दोनों एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, राम की दृष्टि सामने पड़ी, बिल्कुल एक सूखा पेड़ खड़ा हुआ था जिसमें एक भी पत्ता हरा नहीं था, उसकी जो खाल थी, जो त्वचा थी, छिलका था, वो भी सूख चुका था। सीता ने कहा देखो, राम जी ने कहा देखो सीता, जो सामने पेड़ खड़ा है ये बिल्कुल सूखा हुआ है, एक पत्ता हरा नहीं है, लेकिन फिर भी पेड़ बहुत सौभाग्यशाली है, क्योंकि इसके बगल में एक लता खड़ी है, उस लता ने जमीन से लेकर के शाखाओं पर्यंत इसको ऐसे लपेट रखा है कि कहीं भी सूखेपन की अनुभूति वृक्ष को नहीं हो रही है। ये पेड़ बहुत सौभाग्यशाली है, परम सौभाग्यशाली है, ऐसी लता को पाया। और लता को पा करके देखो, हरियाली हरियाली इसके अंदर है, बड़ा सौभाग्यशाली पेड़ है। ध्यान देना मेरी तरफ थोड़ा। राम जी अपने दिल की बात उस पेड़ के माध्यम से, सीता जी अपनी बात उस लता के माध्यम से कहना चाहेंगी। यदि आपने महादेवी वर्मा का साहित्य पढ़ा हो तो महादेवी वर्मा ने छायावाद का प्रयोग किया है, गिल्लू आदि कई उनकी ऐसे लेख हैं, वो छायावाद का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? छायावाद में क्या होता है, कहा कुछ और जाता है, समझा कुछ और जाता है, बात कुछ कही जाती है, अर्थ कुछ निकलता है, अर्थ कुछ निकलता है। यदि आप कहो तो मैं आपकी भाषा में समझा दूं, छायावाद को समझा दूं, शब्द अटपटा है, शब्द अटपटा है, चलो मैं आपकी भाषा में समझाता हूं। अब समझाना है तो कोई शब्द हो समझ लेना चाहिए। एक शब्द बड़ा विचित्र है, हम आपको बोलने जा रहे हैं, ध्यान से उसको सुनना। वो छायावाद का अर्थ सरल शब्द में होता है, कई लोग गाते हैं ये फिल्मी नगरी है, वो फिल्मी जगत के लोग गाते हैं, और क्या गाते हैं, बोले कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाने, ध्यान देना वो क्या बोलते हैं, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाने, मतलब निगाहें कहीं पर हैं और निशाना ये छायावाद है। क्या है ये छायावाद है, कभी कहना कुछ चाहता है, कहता है कुछ, कहता है कुछ, और अर्थ कुछ निकलता है। बात को ध्यान से सुनना, इसे छायावाद कहते हैं। केवल इसी अर्थ में लेना, उल्टा पुल्टा अर्थ मत कर देना, गड़बड़ा जाए काम। ध्यान देना, सामने पेड़ खड़ा हुआ है, राम जी बोले देखो सीते, वो पेड़ बिल्कुल सूखा हुआ है, पर भाग्यशाली पेड़ है, ऐसी लता को पाकर के हरियाली हरियाली है। सीता जी बोली प्रभु ऐसी बात नहीं है, सच आपको बताऊं तो बात यह है कि वो पेड़ सौभाग्यशाली नहीं है, सौभाग्यशाली तो वो लता है, क्योंकि लता में क्षमता नहीं ऊपर उठने की, वो जा नहीं सकती लता कभी। अरे लता जब भी बढ़ेगी पौड़ेगी किसी के अवलंब और सहारा से बढ़ेगी। अरे लता तो जमीन पे पौड़ने वाली होती है, किसी का पैर पड़ा किसी का जूता का पहना हुआ पैर पड़ा तो बेचारी वो कुचल जाएगी, नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी, उसका जीवन खत्म हो जाएगा। भगवान पेड़ भाग्यशाली नहीं सौभाग्यशाली नहीं, लता सौभाग्यशाली है। सीता बोल रही लता सौभाग्यशाली है, राम बोल रहे पेड़ सौभाग्यशाली है। दोनों की चर्चा को बहुत देर हो गई है, वो अपनी बात। पीछे लक्ष्मण जी जल लेकर के खड़े हैं, बहुत देर हुई, भैया जल ले आया हूं। भैया जल लो। अरे लक्ष्मण कब से खड़े हो? बोले जब से आपने शुरू किया था अपना संवाद तभी से खड़ा हूं। तो आपने सब कुछ सुना? बोले सब कुछ जान लिया मैंने। तो चलो अब ऐसा है, हम दोनों का निर्णय करो कि ये लता भाग्यशाली है सौभाग्यशाली है कि पेड़ सौभाग्यशाली है। कहा भैया हम पे छोड़ रहे हो तो मैं जो कहूंगा वो मानोगे? बिल्कुल मानूंगा। आप निर्णायक हैं, निर्णायक जो निर्णय करेगा मुझे स्वीकार होगा। ध्यान देना, लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैं बताता हूं, तो अब ध्यान से सुनना। सीता मैया को बोला माता बताता हूं, ध्यान से सुनना। लक्ष्मण जी बोले यदि हमसे निर्णय कराना चाहते हो तो मेरे विचार से सच आपको कहता हूं। लक्ष्मण बोले मैं सच कहता हूं, मेरे विचार से ना तो पेड़ सौभाग्यशाली है और ना लता सौभाग्यशाली है। अरे सौभाग्यशाली तो वो है जो इन दोनों की छाया में बैठा है। कुछ समझे? समझिए, सीता कह रही हैं कि ऐसे पति को पाकर के मैं सौभाग्यशाली हूं। मैं क्या समझी? ऐसे पति को पाकर के मैं सौभाग्यशालिनी हूं। ध्यान देना, अपना अपना पक्ष है, अपना अपना पक्ष है। राम जी बोले कि ऐसी सीता को पाकर के मैं सौभाग्यशाली हूं, और सीता जी बोली ऐसे राम को पाकर के मैं सौभाग्यशाली हूं। लक्ष्मण बोले हमारे विचार से तो यह है कि इन दोनों की छत्र छाया में जो बैठा है वही सौभाग्यशाली है। ध्यान देना, पिता समझे अर्थात पति समझे कि मैं सौभाग्यशाली हूं ऐसी पत्नी पाकर के, और पत्नी समझे कि मैं सौभाग्यशाली हूं ऐसा बाप पाकर के, और बच्चे समझे कि मैं सौभाग्यशाली हूं ऐसे माता पिता को पाकर के, ऐसे पिता को पाकर के, ऐसी मां को पाकर के। ध्यान देना, जिंदगी में परिवार में घर में जब ऐसा सामंजस्य बन जाए, जब ऐसी स्थिति पैदा हो जाए, तो समझना वो घर घर नहीं रहा, अब वो घर अयोध्या बन गया है। अब उस घर में राम जी आ गए हैं, सीता लक्ष्मण आ गए हैं, तो क्या जीवन सुंदर राम जी का बीत रहा है, वनगमन की यात्रा में चल रहे हैं। सुग्रीव क्षेमैत्री होती है, हनुमान जी के द्वारा सीता की खोज कराई गई। सीता की खोज के बाद में राम जी पहुंचे हैं लंका में, और लंका में पहुंच करके रावण को मार करके, मेघनाथ को मार करके, सभी असुरों को मार करके, और भगवान राम पुष्कर विमान में बैठे हैं और अयोध्या में आ गए हैं। मैंने आपको पूरी रामायण सुना दी। बोलो कृष्ण कन्हैया।
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम। कहती सुनती आवें हो, कहती सुनती आवें अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
दशरथ के राज दुलारे कौशल्य की आंख की तारे,
दशरथ के राज दुलारे कौशल्य की आंख की तारे,
हे सूर्य वंश के सूरज, हे
भरी वाणी राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी
सुनो रे राम कहानी
हो कहती सुनती आवे हो कहती सुनती आवे अखियों में पानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम ध्यान से चित्त की वृत्ति को समाहित करें आगे की पावन कथा को श्रवण करें अब भगवान कृष्ण का चरित्र आरंभ होता है बोल वृंदावन बिहारी लाल की कथितो वंश विस्तार कथितो वंश विस्तार भवता सोम शूरयो राज्ञां च भय वंशानां चरितं परम अद्भुतम् परीक्षित ने हाथ जोड़ करके गुरुदेव सुखदेव से आवेदन किया निवेदन किया भगवान कथितो वंश विस्तारो भवता सोमशूरयो सोमशूरयो हो चंद्रवंशी राजाओं का सूर्यवंशी राजाओं का अर्थात सूर्यवंश और चंद्रवंश की हमने यथेष्ट दिल भर के मन भर के कथा को सुना है चर्चाओं को सुना है कथितो वंश विस्तार भवता सोम सूरयो राज्ञां च भय वंशानां हे राजन मैंने आपको उभय वंशानां उभयो हम दोनों वंशों की आपको कथा सुनाई अब चरितम परम अद्भुतम अब मैं आपको अद्भुत चरित्र को सुनाने की तैयारी में हूं राजन आज आपको सुनते सुनते कथा को चार दिन हो गए सुखदेव जी महाराज बोले राजन आपको कथा को श्रवण करते करते चार दिन हो गए हैं हे राजन आपने अभी तक एक बार भी उठकर के जल का पान नहीं किया है एक भी बार आपने जल नहीं पिया है सुखदेव जी बोले हे राजन नये साति दुस्साहुत माम तिक्तो मपि बाधिते पिबंतम तुन मुखाम भोजम अच्युतम हरि कथामृतम सुखदेव जी महाराज बोले राजन आपको पिपासा होगी जल पीने की छुट छुट माने भूख तुमको भूख होगी और प्यास होगी तो राजन ऐसा करो अब आप थोड़ा जल पी सकते हैं जल पी लो राजा परीक्षित ने बहुत अच्छी बात कही बहुत सुंदर बात कही राजा परीक्षित बोले भगवन पिबंतम तुन्मुखाम भोजम पिबंतम तुन्मुखाम भोजम तुन माने आपके मुखाम बुझ आपके पावन मुखार बिंद से पिबंतम अच्युतम हरिकथामृतम हरिकथामृतम पिबंतम हमने आपकी पावन वाणी से हरि की कथा का श्रवण किया है और महाराज जब कोई हरि कथा का श्रवण कर लेता है श्रवण करता है तो ये जो भूख है ध्यान देना ये जो प्यास है ये मिट जाती है। ध्यान देना, जब भक्ति बढ़ती है, जब भजन बढ़ता है तो भोजन घट जाता है। ध्यान देना, जब भक्ति बढ़ती है तो भजन कम, जब भजन बढ़ता है तो भोजन कम हो जाता है। परीक्षित ने कहा, महाराज भोजन कम नहीं, कम नहीं, बिल्कुल टोटल एकदम कुछ इच्छा नहीं है। आपकी पावन वाणी से निश्चित जो शब्द है, जो ओज है, जो बल है, जो ताकत है, जो शक्ति है, इतनी मेरे को मिल रही है। अब इस बाह्य जल की आवश्यकता नहीं है, बाह्य भोजन की आवश्यकता नहीं है। योग दर्शन को पढ़िए, योग दर्शन को पढ़िए। ईश्वरानंदी टीका में लिखा हुआ है कि योगी अपनी जिह्वा को खेचरी मुद्रा के माध्यम से उल्टा कर लेते हैं और वो योगी एक दो साल नहीं, आजीवन उसी स्थिति में समाधि में बैठ जाते हैं। न उन्हें खाने की आवश्यकता, न पीने की आवश्यकता रहती है। क्यों? कि खेचरी मुद्रा में वो बल होता है, एक रस की प्राप्ति होती है, जिस रस के द्वारा उनको पूरा ओज, पूरा ताकत मिलती है, पूरा बल मिलता है। सुखदेव जी महाराज बोले, सुराजन परिचित महाराज बोले, सो गुरुदेव आपकी पावन वाणी से हमको पूरा योज मिल रहा है। वो भगवान की जो कथा पावन है, कुछ मेरे को पूर्ण रूपेण शक्ति मिल रही है, हमें कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ इच्छा नहीं है। भगवान कुछ पान करने की इच्छा नहीं है, कुछ खाने की इच्छा नहीं है। आगे विवेचन करते हैं, एवं निशम्य भृगुनंदन साधु वादम। अरे एवं निशम्य भृगुनंदन साधु वादम, अवैयाश कहास भगवन अथ विष्णुरातम। अथ विष्णुरातम, सुना ध्यान से, अथ विष्णुरातम, विष्णुरातम, विष्णुरात नाम है परिचित का। क्या नाम है? परीक्षित का नाम विष्णुरात है। विष्णुरातम, विष्णुरात बोले, भैया शिकाश भगवन, अरे व्यास के पुत्र, जब व्यास के पुत्र बोलते हैं, कथा अमृत का प्रवाह प्रवाहित करते हैं, जब भैया शिका व्यास के पुत्र सुखदेव जब कथा रस का प्रवाह करते हैं, तो उस प्रवाहित में बहने वाला जीव भूख और प्यास से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान में मुक्त हो गया एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम। मैं आपका कहां तक साधुवाद करूं, मैं आपकी कहां तक प्रशंसा करूं, जितनी प्रशंसा करूं, जितनी बाह-बाह करूं, उतनी ही कम है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, भगवान अब तो आप कृपा करो, कथा में कोई ब्रेक नहीं, कोई विराम नहीं, अब तो आप बस एक ही काम करो कि मुझे केवल कथा सुनाओ। परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान मैं कथा सुनना चाहता हूं, सुनाए भगवान। अवतीर इदो बंसे, अवतीर इदो बंसे भगवान भूत भावना, अवतीर इदो बंसे भगवान भूत भावना, कृतवान यानि विश्वात्मा तानि नो बद विस्तरा। भगवान बस एक कृपा कीजिए, अवतीर इदो भगवान, भगवान ने कब कैसे क्यों अवतार लिया। भगवान भूत भावना कृतवान यान विश्वात्मा तानी नो बद विस्तरा। तानी हमको उसको आप विस्तार पूर्वक श्रवण कराने की कृपा करें, मैं उस कथा को सुनने में बहुत लालायित हूं, बहुत उत्सुक हूं, सो कृपा करके मेरे को आप कथा सुनाइए। जब ऐसा सुखदेव जी महाराज ने से निवेदन किया, परीक्षित ने, आप कथा सुनना चाहते हैं भगवान, एक छोटा सा प्रश्न करूं। हाँ बोलिए। ध्यान देना, भागवत का प्रश्न बहुत ही सुलझा हुआ होता है। जो मृत्यु की शैया पर, मृत्यु के सामने, काल के काल में जो होता है, वो दुनिया की बात नहीं करता, वो केवल भगवान की बात करता है और वैराग्य की बात करता है, प्रभु की बात करता है। परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया, आप भी सुनो, कितना सुंदर प्रश्न है। भगवान बतलाने की कृपा करो कि ये जो परमात्मा है, क्या वो परमात्मा निराकार में रक्षा नहीं कर सकता है? उसे अवतार लेना आवश्यक है, उसका अवतार होना जरूरी है। अवतार न ले और बिना अवतार के लिए ही वो अपना काम कर दे, ये प्रश्न किया। भगवान मेरी हार्दिक इच्छा है, इस प्रश्न पर थोड़ी आप कृपा करें, मुझे बतलाने की कृपा करें। बहुत अच्छा उत्तर दिया, अरे गवाम शर्पी शरीरस्थम, गवाम शर्पी शरीरस्थम न करोति अंग पोषणम एवं सर्व शरीरस्थम सर्पिवत् परमेश्वरा तदेव कर्म रचितम पुनत्तिष्णैव भेषजम और बिना उपासनामेव न हितम करोति नृणाम। नृणाम नृणाम मनुष्याणाम। हे राजन, किसी भी व्यक्ति की कभी भी परमात्मा रक्षा नहीं कर पाता है जब तक वो साकार रूप में नहीं आता है। ध्यान देना, साकार रूप में उसे आना ही पड़ता है, आना ही पड़ता है, तभी तो वो रक्षा कर पाता है। ध्यान देना, बड़ी सुंदर बात, उदाहरण दिया, यदि वो निर्गुण निराकार में रक्षा करता तो रावण को मारने के लिए राम बन करके वो नहीं आते। यदि वो निर्गुण में रक्षा करते तो उनको नरसिंह भगवान आकर के नहीं बनना पड़ता है। हे राजन, यदि वो निराकार में रक्षा करते तो उनको बरहा बन के आने की क्या आवश्यकता थी? ध्यान देना, राजन जैसे तिलों में तेल होता है, तिलों में तेल होता है, अग्नि में अग्नि होती है, माचिस की तीली में अग्नि होती है। ध्यान देना, जैसे माचिस की तीली में अग्नि है, काठ के अंदर अग्नि है, काठ के अंदर अव्यक्त अग्नि क्या रोटी को सेक सकती है? क्या रोटी को पका सकती है? क्या दाल को पका सकती है? हे राजन, जैसे जिस प्रकार से वो अग्नि जब तक प्रकट नहीं होती है, रूप को धारण नहीं करती है, तब तक वो भोजन नहीं बना सकती है, यद्यपि निर्गुण रूपेण निराकार के रूप में, अव्यक्त के रूप में उसमें अग्नि है, फिर भी अग्नि होने पर भी उसे दाल साग सब्जी नहीं बन सकती है। दाल साग सब्जी को बनाना तो अग्नि को प्रकट होना पड़ेगा। अरे तिलों में तेल है, तिलेषु तैलम, तिलेषु तैलम, तिलों में तेल है, लेकिन जब तक उन तिलों को पेरा नहीं जाएगा कोल्हू में और जब तक वो तेल नहीं निकलेगा तो पूरी नहीं बना सकते हो। कढ़ाई में तिल डाल लेने से पूरी बन जाएगी? राजन पूरी नहीं बनेगी, तिलों से तेल निकाला जाता है तभी पूरी बनती है। सो राजन, जिस प्रकार से तिल से पूरी नहीं बनती है, माचिस की तीली में अग्नि है, काठ में अग्नि है, रोटी नहीं पकती है, ऐसे ही वो जो तत्व है उस तत्व को भी अवतार लेने पड़ता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बहुत अच्छी बात बताई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए, मेरी तो ये व्याख्या बहुत लंबी हो जाती है, आइए लौटता हूं, अब व्याख्या पर नहीं जाऊंगा, दिल तो कर रहा है कुछ श्लोक बोलूं। बोले क्या मेरे भैया, वाह 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 वाह, आप साथ रहो तो मैं बहुत दमदार हूं, बलवान हूं, क्या बात है। एक एक ग्यारह होते हैं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सुनो ध्यान से, है कन्हैया तो अभी लो फटाफट यू लो आप चुटकी में सब पाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, हम तो कुछ और समझ गए थे, आइए सुनिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम, एक श्लोक बोल करके फिर फटाफट एक्सप्रेस। आक्रांता भूरि भारेण, अरे आक्रांता भूरि भारेण ब्रह्माणम शरणम यू गोर भूत्वा सुमुखी खिन्ना कृदंती कर्णम विभो। ब्रह्मा के पास में, ध्यान देना, ब्रह्मा के पास में पृथ्वी ने गाय का रूप बनाया और गई समस्त देवताओं को लेकर के अंधे विनय किया, भगवान बहुत बड़ी समस्या है, अनाचार पापाचार बढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं हम अभी व्यवस्था करते हैं, आप सब लोग मेरे साथ चलो विष्णु के पास। विष्णु लोक में गए, विष्णु से प्रार्थना करी, विष्णु जी महाराज ने कहा चिंता करने की आवश्यकता नहीं, ऐसा है देखो आप सब ब्रज में जाओ, सब ब्रज में जाओ, और ब्रज में जाकर के जितने ऋषि महर्षि योगी इति अमलात्मा है, ग्वाल बनो, ब्रजवाल बनो, वृक्ष बनो, पक्षी बनो, एम बनो, तेम बनो, बहुत कुछ लंबा विस्तार है, सब रूपों को धारण करके वहां पर चले जाओ, देखो मैं आऊंगा कृष्ण बनूंगा, हमारी योग माया कन्या बनकर के आएगी, शेष नाग बलराम बन के आएंगे और सब आकर के व्यवस्था को व्यवस्थित करेंगे, समस्याओं को दूर करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, ऐसा आश्वासन दिया योगी इति अमलात्मा, महात्मा देवता आए ब्रज में, सब प्रादुर्भूत हो गए। इधर देवक की पुत्री देवकी जन्म गई, थोड़े ही दिनों में बड़ी हो गई, देवक ने सोचा मेरी बिटिया बड़ी हो गई, शादी करनी चाहिए, बर खोजना चाहिए, सो बर खोजा, बसदेव नाम के बर को खोजा और बर खोज करके दोनों की शादी करा दी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, शादी हो गई। शादी होने के बाद कंस ने सोचा ये तो मेरी प्यारी बहन है, हम इसको स्वयं अपने हाथ से भेजूंगा, रथ हाँक के सारथी क्या हाँक के ले जाए रथ को, मैं रथ हाँकूंगा। सो रथ के घोड़ों के लगामे दोनों अपने हाथ में पकड़ ली और लगामों को पकड़ करके रथ पर कहा कि आओ बहन बैठो, बसदेव जी को बैठाया और बैठा करके रथ यूं चलनी ही वाला था कि इतने में एक आवाज आई, आवाज आई, अरे कंस जिसको तू इतनी खुशी से विदा कर रहा है, भेज रहा है, इसकी अष्टम संतान तेरी काल होगी, तेरी मौत होगी, तुझे मारेगी। जब कंस ने सुना मेरी मौत, इसकी अष्टम संतान, कंस ने कहा न रहे बांस न बजे बांसुरी, न रहे बांस न बजे बांसुरी, मैं बांस को ही खत्म कर देता हूं, ये बंसी कहां से बजेगी, मैं इस देवकी को ही खत्म कर देता हूं। निकाला उसने खटक तलवार और निकाल करके मारना चाहा। ध्यान देना, विपत्ति में मुश्किल मुसीबत में धैर्य रखो, अधैर्य मत हो जाओ। बड़ा सुंदर प्रसंग आया है, वसुदेव जी महाराज ने समझाया कंस को, अरे देख तो सही जिस साड़ी को पहन करके लामे फेरे किए हैं, अभी वही साड़ी है जिन हाथों में मेहंदी लगी थी, अभी तक उसका रंग भी नहीं उतरा है, जो तिलक किया था वो ज्यों का त्यों है, ऐसी क्या बात हुई, अरे इसकी आठवीं संतान मेरी काल है, इसको मैंने जरूर मारना है। उन्होंने कहा आपको समस्या खतरा आठवीं से है ना, हाँ आठवीं से है, ध्यान देना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कंस को समझाया, कंस को माहौल को बदला, क्या किया, माहौल बदलो, वृंदावन बिहारी लाल की कृष्ण कन्हैया लाल की, माहौल बदलो। वसुदेव ने बहुत सुंदर बात की, अरे कंस जिसको तू मारने जा रहा है मार सकता है, युवराज है ना, बलवान है, वीर है, तेरे हाथ में खड़ग है, लोग तेरे साथ हैं, जन बल धन बल सभी दल तेरे पास हैं, तू इसको मार सकता इस अबला को, लेकिन मारने के पहले एक बात सोच ले, इस कर्म का फल क्या होगा तुझे मालूम है? इसका फल होगा कीचड़ का, गंदी नाली का, उस भिष्टा का कीड़ा बनना, कीड़ा बनेगा नाली का, अबला को मारेगा, कीड़ा बनना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखना, तुझे कोड़ी बनना पड़ेगा, अंधा बनना पड़ेगा, लंगड़ा बनना पड़ेगा, ये तेरा जो कर्म है तुझे किस गर्त में गिराएगा, कुछ कह नहीं सकते हैं। संभल, जब डर पाया, शास्त्रों के प्रमाण दिए, तो थर्रा गया कंस, हाथ से तलवार छूट गई, मुझे बनना पड़ेगा, हाँ तुझे बनना पड़ेगा, एक कर्म तेरे साथ में जाएगा, कैसे जाएगा? बोले जैसे तेरी छाया तेरे साथ चलती है, जैसे तेरी छाया चलती है ऐसे तेरे पीछे जाएगा। जिस प्रकार से गाय की पूंछ भैंस की पूंछ उसके पीछे पीछे चलती है, वैसे ही तेरा कर्म तेरा अनुगामी बनेगा, तेरे पीछे पीछे चलेगा और तेरे को कोड़ी बनाएगा, अंधा बनाएगा, लंगड़ा बनाएगा, भिष्टा का कीड़ा बनाएगा। बोल, बनने को तैयार? बोले बिल्कुल नहीं। फिर कर्म करना छोड़ दे, वरना नहीं बच सकता है, वरना नहीं बच सकता है। माहौल बदला, शास्त्र का वचन बोला, कंस की बुद्धि पलटी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जब बुद्धि पलटी, ध्यान देना, बड़ी सुंदर बात, उसकी बुद्धि थोड़ी पलटी, अच्छा मैं नहीं मारता हूं पर मेरी समस्या का समाधान करो, इसका अष्टम गर्भ संतान मेरा काल है, इसके लिए मैं क्या करूं, उपाय कोई बताओ, तुझे इसी से डर है? हाँ इसी से डर है। तू आठवें की बात करता है, मैं तेरे को आठवें से पहले जितने होंगे सारे तेरे को दे दूंगा, तू एक को मारने की बात कर, तू सबको मार देना, एक से खतरा है ना, हम सबको दे देंगे। आप कहेंगे महाराज ये तो बड़ा गलत काम कर दिया वसुदेव जी ने, वो तो एक ही मारने वाला था, उन्होंने सबके लिए कह दिया। वसुदेव ने बड़ी सूझ से काम लिया, समझ से काम लिया। वसुदेव ने सोचा कि अष्टम के होने के पहले पहले हो सकता अपनी मौत से मर जाए, ये सारे के सारे बच जाएंगे, ये तो अभी मारने को तैयार खड़ा है, इस समस्या से तो सुलझो पहले, जो समस्या अभी खड़ी है उससे तो उबरो किसी प्रकार से, अभी बचा लो, बाद में देखा जाएगा, बाद में देखा जाएगा। वसुदेव ने सोचा हो सकता है इनमें से मेरा पहला बेटा ऐसा निकले भैंस को मार दे, दूसरा उसको मार दे, कोई बड़ी बात नहीं, कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था, भगवान की लीला को कौन जान सकता है। माहौल बदलो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। उसी माहौल में रहना ठीक नहीं, देखो वो बड़ा क्रोध में भरा हुआ है, यदि क्रोध में वसुदेव भी आ जाएंगे तो काम खराब हो जाएगा, ध्यान देना। कंस तो क्रोध में है और तो कहीं क्रोध में वसुदेव आ गए तो क्रोध काम खराब करता है, गुस्सा काम खराब करता है, जब दोनों की गुस्सा टकराएगी विस्फोट होगा, समस्या खड़ी हो जाएगी, उस समय क्या करो? उस समय माहौल को बदलने का प्रयास कीजिए। घर में कभी ऐसी नौबत आती है क्या कि पति भी गुस्सा में हो, पत्नी भी गुस्सा में हो? अब बम्बे में ऐसा होता नहीं होगा, सब बड़े अच्छे लोग हैं, सब हैं श्रेष्ठ हैं पढ़े लिखे, यहां ऐसी बातें होती नहीं है, यहां ऐसी बातें। हमारा एक भक्त है चंडीगढ़ में, हमसे बोला गुरुजी, वो दोनों खुली बातें कभी कभी कर लेते, दोनों बैठते हैं सत्संग में, तो कहा गुरुजी हमारी पत्नी मुझे बहुत गुस्सा करती है। वो बोला फिर तू क्या करता है? गुरुजी माहौल बदलता हूं, परिवेश बदलता हूं, वातावरण बदलता हूं, शिक्षा लो। वसुदेव ने कहा परिवेश बदलना बहुत जरूरी है, यदि उसको गुस्सा आ रही हमको भी गुस्सा आ जाएगी तो काम खराब हो जाएगा, काम बिगड़ जाएगा। अरे धीरज धर्म और मित्र यारु नारी, आपत्ति काल पर रखिए चारी। धीरज, ध्यान देना, धर्म मित्र और नारी, इन चारों को आपत्ति में ही जाना जा सकता है। हम कितने धैर्यशाली हैं, किसी के यहां पर कोई घटना घट गई, उपदेश देना बहुत सरल है, जब अपने पे घटती है फिर मालूम पड़ता कितने धैर्यशाली हैं आप, धीरज, आप कितने धर्मज्ञ हैं, कितने बड़े धर्मात्मा, तभी जाना जाएगा। मित्र बहुत बन जाते हैं, समस्या पड़ने पे साथ रहे वही मित्र है। नारी आपत्ति में साथ देती है तो वही नारी है। गोस्वामी जी ने कहा है, इनका परिचय तो ऐसी अवस्था में होता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, ध्यान देना, माहौल बदलो, परिवेश बदलो। पति पत्नी को गुस्सा आ गया है भैया, पति गुस्सा आ गया, पत्नी गुस्सा आ गया तो काम खराब हो जाएगा। उस समय क्या करो, उस समय क्या करो? ओ भगत बोला, चंडीगढ़ वाला भगत बोला, क्या बोला? बोला गुरुजी एक दिन में बहुत लेट आया, प्रोफेसर है वो, बहुत लेट आया। बोले हमारी पत्नी इतनी बिगड़ी हम पर, और कहा कि बिल्कुल गैस तो खत्म हो गई, अब गर्म रोटी गर्म किसमें करें, ये ठंडी रोटी खानी पड़ेगी, ठंडी दाल खानी पड़ेगी, ठंडी सब्जी खानी पड़ेगी, और खूब आक्रोश में आके बहुत कुछ बोलने लगी। ओ भक्त बोला महाराज, जब वो बहुत गुस्सा में आई तो मैंने उठाई कढ़ाई उसके सिर पे रख दी। महाराज मैंने उठाई कढ़ाई और पत्नी के सिर पे रख दी। बोलिए ये क्या कर रहे हो, ये क्या तरीका है, कोई ढंग है ये बात करने का? वो तू ही तो करी थी कि अभी गैस खत्म हो गई किसमें गर्म करें, तो हमने सोचा तेरे दिमाग में बड़ी गर्मी है, अपने आप गर्म हो जाएगी, तो थोड़ी देर रुक जा, देख अभी गर्म होते उसी गर्म गर्म सिखाऊंगा। पत्नी हंसने लगी, ध्यान देना, बात बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण बात कहीं पर मिले उसको स्वीकार कर लो। यदि कहीं ऐसी नौबत आती है तो ऐसा आप जरूर करना, माहौल को बदलो, परिवेश को बदलो। वसुदेव जी महाराज ने परिवेश ही बदल दिया, तलवार को लेकर के खड़ा है और सिर काटने को तैयार खड़ा है। ऐसी बात कही, कंस कांप गया, तलवार हाथ से छूट गई। ऐसा इस कर्म का परिणाम ये होगा। देहे पंचत्वमापन्ने, उपदेश दिया वसुदेव जी ने, अरे देहे पंचत्वमापन्ने और देही कर्मानुगो वशा, देहांतरम अनुप्राप्य और प्राक्तनम तिजते बपू। हे कंस, ये कर्म तेरे साथ में जाएगा, धोखा मत खा जाना, इस अबला को मार मत देना, कोई पाप कर्म नहीं कर देना, कोई बचाने वाला नहीं है, भगवान भी नहीं बचा सकता है, और किसी की बात छोड़ दे। अरे स्वकर्म सूत्री गृहीतो ही लोका, ये आदमी स्वयं कर्मों की संरचना अपने आप करता है। जब करता है तो होश में नहीं होता है, भोगता है तब रोता है, भोगता है तब सावधान, सतर्क हो जाओ। ये कर्मों की श्रृंखला बड़ी विचित्र है, बड़ी विलक्षण है, बच के रहो, सावधान होकर के रहो। कंस थर्रा गया, ध्यान देना, देवकी को छोड़ दिया, बस तो देवकी को ले गए, कोई वचन दे दिया, तू एक की बार का मैं आटा दे दूंगा तेरे, मार देना तूने, ऐसा बात है तो ले गया देवकी को। ध्यान देना, पहली संतान हुई और संतान के होते ही उसने सुंदर सा एक पात्र लिया, उसने पहली संतान को रखा जिसका नाम कीर्तिमान। कीर्तिमान को लाला, लो ये पहली संतान है, इसका नाम कीर्तिमान है, जो करना है कर लो। कितना ईमानदार, ध्यान देखना, ध्यान देना माताओं, कोई अपना लाल जिगर का दिल, अपने दिल का टुकड़ा किसी को पेश कर सकता मारने के लिए? सोचो ना, मातृभाव, चलो नहीं जाता हूं, मातृभाव पे नहीं जाता हूं, क्या मातृभाव होता है, लौटो ना कथा लंबी हो जाएगी। हाँ,
अभी अभी तुरंत चुटकी में करता हूँ काम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की,
ध्यान से सुनना। जय जय श्री राधे श्याम। पहले पुत्र को लिया, अरे तो बहुत प्यारा है, कितना सुंदर है, अरे आठवां मेरा काल होगा, इसे क्यों मारूं? वसुदेव इसको ले जाओ, वापस ले जाओ, मैं नहीं मारना है। वसुदेव ने उस पुत्र को लिया, चलने लगे। नारद जी आए, अरे तूने क्या किया पागल, लौटाल दिया अजा काल। अरे भाई काल क्यों है, वो काल नहीं है, वो आठवां काल है। नारद ने अपने झोली से एक कमल का फूल निकाला, लो इसको पकड़ो और जरा गिनो कितनी पंखुड़ियां हैं। कंच ने गिनी, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ हैं। कौन सी आठवीं है, बोले ये। अब ऐसा करो यहीं से गिनो, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठवीं कौन ये। अब यहां से गिनो, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ। सबको गिनवाया, हर पंखुड़ी आठवीं हो रही है। अब बता कौन सी आठवां है। ये देवता है, कोई आठवां बन सकता तो ये मार सकता है। सब साफ कर दू, छोड़ मत। तंत का झपटा, कीर्तमान को लिया, मार दिया। इसी प्रकार से छह पुत्रों को मार दिया संक्षेप में। सातवां पुत्र आया, उठा के जेल में डाल दिया गया। जल्दी में कई बार न भूल जाऊं मैं, जेल में डाल दिया। वसुदेव देवकी को छह पुत्र हुए, सातवां पुत्र को योग माया के माध्यम से रोहिणी के घर में पहुंचा दिया। उनसे बलराम जी महाराज हुए, ध्यान से, बलराम जी महाराज हुए। अष्टम गर्भ जब आया, देवकी का स्वरूप देखने लायक था। भगवती जैसा उसका स्वरूप है, जो जिस भाव से दिखता उसको वही दिखता, कंस को वो काल दिखती है, वगैरह वगैरह। आगे बढ़िए। आधी रात्रि का समय है, अर्धरात्रि का समय है। अर्धरात्रि में ध्यान देना, प्रश्न और सुत्पा, ये कथा गर्ग संहिता की है। गर्ग संहिता में चर्चा आदि प्रश्न और सोत्पा ने तप किया, भगवान खुश हो गए। वरम ब्रूही वर मांग, तो कहा कि चाहो आप समान सुत, आपके जैसा पुत्र हमको चाहिए। सो भगवान ने सोचा कि हमारे जैसा मांगा था, सो जेल के अंदर वो चतुर्भुज भगवान छोटे से प्रकट हो गए। बोलो विष्णु भगवान की। अरे आप तो चार हाथ वाले आ गए हो, दो बार मैंने दो वाले मांगे थे, ये आप चार वाले। हम तो आप में भगवान को भगवान बुद्धि बना लेंगे, फिर हम वात्सल्य भाव नहीं प्रकट कर पाएंगे। और प्रभु एक प्रार्थना और है, छह मार दिए गए, सातवां पता नहीं कहां चला गया, अब आठवें तुम आए हो, हमें बड़ा डर है कुछ हो न जाए। बोले चिंता नहीं करो, हमसे व्यवस्था कर देंगे। व्यवस्था कहां से होगी, हाथ में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ियां हैं, क्या व्यवस्था होगी। भगवान बोले ये सब चलता है, मेरे लिए कुछ चुटकी का काम है, आप संकल्प करो। वसुदेव ने संकल्प किया, बेड़ियां हथकड़ियां टूट गई, तुरंत ताले खुल गए, परेदार सो गए, दलिया में रखा है, गोकुल में को जाने लगे हैं। रास्ते में जमुना मिलती है, जमुना को पार किया, उधर यशोदा मैया पथारी पे लेटी हुई है, बिस्तर पे लेटी हुई है, उनको एक कन्या का प्रादुर्भाव हुआ है। गए, कन्या को लेटाया, कन्या को उठाया, अब द्विभुज बन गए ना, तो द्विभुज को लिटाया और कन्या को उठाया, वापस आ गए, जेल में पहुंचे। और जेल में पहुंचते ही भैया, जेल में पहुंचते ही क्या होता आपको मालूम है, ताले लग गए, बेड़ियां लग गई, जैसा का तैसा। थोड़ी ही देर में कन्या रोने लगी, जब कन्या रोई, ध्यान देना, जब कन्या रोई, कन्या के रोते ही कंस को सूचना मिली। कंस उसी अवस्था में दौड़ के आया और कन्या को छीना, ला मेरे को, ये मेरा काल है। अरे भैया ये तो अबला है, ये तो नारी है, इससे तू डरता क्यों है, ये तो नारी है, तेरा क्या बिगाड़ सकती, कुछ नहीं जानता हूं, ये अष्टम है, अधिक कुछ नहीं, अष्टम है, ये मेरा काल है। उसने उस कन्या को लिया और ज्यों उठाकर के पत्थर पे मारा, और मारते ही वो हाथ से छिड़की और आकाश में जाके आकाशवाणी की, एक अंश तुझे मारने वाला तो प्रकट हो चुका है। वही देवी अष्टभुजी मां दुर्गा का रूप, आप कभी जाइए मिर्जापुर के पास विंध्यवासिनी स्थल है, वहां आज वो शक्ति के रूप से विराजमान है। इस प्रकार से वो चली गई। इधर अब मुड़िए थोड़ा, इधर कंस ने पश्चाताप किया, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, वो तो जन्म ले चुका है। पश्चाताप करते हुए बेड़ियों को खोल दिया, हथकड़ियों को खोल दिया, उन्हें मुक्त कर दिया। थोड़ा अब दृष्टि डालो गोकुल की तरफ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। गोकुल में ध्यान देना, अब गोकुल में रात्रि के 11 बजे हैं, रात्रि के 11 बजे हैं, और 11 बजे पर उनकी दोनों बहनें दौड़ के गौशाला में गई, नंद के, नंद बाबा के पास। अरे भैया, अरे भैया, घर में लाला भयो है, घर में लाला भयो है, घर में लाला भयो है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, जल्दी आओ भैया, जल्दी आओ। सो भैया उस पर ओम लिखा है, जिह्वा पे ओम लिखा है, और बढ़िया सुंदर पालना डाला है। मेरी माताएं बैठी रहे, आनंद लीजिए। देखिए हमारी बात को पहले सुने, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। थोड़ा आनंद को ले, आनंद को भगवान को लाइए।
बोली वाके बिहारी लाल की, ओ कजरा रे मोटे मोटे तेरे ने नजर नहे लग जाए, नजर नहे लग जाए, नजर नहे लग जाए, नजर नहे लग जाए। बाकी बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे रे भाई नजर नहे लग जाए, नजर नहे लग जाए, नजर ना लग जाए। काजल की कोरे, काजल की कोरे, मेरा जिगर मरो रे, मेरा जिगर मरो रे, रंगी रस में मोरे, रंगी रस में मोरे, मैं तुम्हारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे ने भाई नजर ना है लग जाए, नजर ना है लग जाए, नजर ना लग जाए। जय हो, बधाई हो। आंखों का काजल, आंखों का काजल, मेरा जिगर है घायल, मेरा जिगर है घायल, तेरे प्यार ने पागल, तेरे प्यार ने पागल, करी डारी रे कचरा रे मोटे मोटे तेरे ने नजर ना है लग जाए, नजर ना है लग जाए, नजर ना है लग जाए, नजर ना लग जाए। हो
ओम जय कानाकारा प्रभु नटवर नंद लाला मेरे मोरली वाड़ा बेटे मोरली वाड़ा गोपी ना प्यारा ओम जय कानाकारा प्रभु कामण कहे गेरा माखन चोरी यशोदा घेर वैकुंठ उतारे वाले वैकुंठ उतारे काली अमर जन के दा काली अमर जन के दा कायो ने चारे ओम जय काना कारा गुण तनो तुझ पार के में नहीं आवे प्रभु के में नहीं आवे ने दीवेद पुकारे ने दीवेद पुकारे पुनीत पुकावे ओम जय काना कारा गोवर जननी गोजा तचली आंगणिये प्रभु तचले आंगणिये इंद्र नो गर्व उतारो इंद्र नो गर्व उतारो जय जय गिरधारी ओम जय काना कारा ओम जय काना कारा प्रभु नटवर नंदलाला प्रभु नटवर नंदलाला मेठे मोरलीवाड़ा मधुरे मोरलीवाड़ा गोपीना प्यारा ओम जय काना कारा ओम जय काना कारा ओम जय काना का
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम विद्यारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणाध्वज मंगलम करुणाध्वज मंगलाय तरो हरे सर्व मंगल मांगल्ये श्री दरबार सारिये शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते जलेन प्रदक्षिणी कृतय पुष्पैः देव वंदनम हाथ से भगवान को आरती बता दें और बाद में व्यास जी भगवान को आरती दें स्वयं आरती लें और आरती की थाली आप पीछे जाने दें ताकि सबको लाभ मिले
नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की
नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की
नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की
नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की
ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की
ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की
जय हो गोपाल की जय यशोदा लाल की
जय हो गोपाल की जय यशोदा लाल की
नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की
नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की
जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल 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 की
नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की
नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की
नंद भयो जय कन्हैया लाल की
नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की
जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल 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 की
नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की
नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की
नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की
नंद की
नंदी भयो जय कन्हैया लाल की।
हाथी घोड़ा पाल की 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 जय कन्हैया लाल की।
नंद की नंदी भयो जय कन्हैया लाल की।
नंदी भयो जय कन्हैया लाल की।
ब्रज में आनंदी भयो जय हो गोपाल की।
ब्रज में आनंदी भयो जय हो गोपाल की।
जय हो नंदी लाल की जय हो गोपाल की।
जय हो नंदी लाल की जय हो गोपाल की।
आनंद उमंगी भयो जय हो नंद लाल की।
आनंद उमंगी भयो जय हो गोपाल की।
नंद की आनंदी भयो जय कन्हैया लाल की।
नंद के आनंदी भयो जय कन्हैया लाल।
भोले बाल कृष्ण लाल की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राम।